శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత శ్రీవాసుది హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. వీ నెవర్ గాట్ దట్ సెకండ్ మైక్ तो भगवान बोल रहे थे कि जैसे जो श्रेष्ठ वर्ग है समाज में, शिक्षक वर्ग, जो प्रशासक वर्ग है और राजा होते हैं और पिता होता है, उनको सभी जो आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथ सुपरिचित होना चाहिए. तो ऐसे कहते हैं, वो लोगों को ही पता नहीं है धर्म क्या है, वो लोग क्या उदाहरण स्थापित करेंगे और क्या दुनिया उनको पालन करेगा, है कि नहीं. जैसे हम आरंभ में कह रहे थे, आध्यात्मिक संस्था में भी ऐसा ही होता है, जो श्रेष्ठ वर्ग है वो लोग धर्म नहीं पालन कर रहे तो दूसरा लोग पालन नहीं करेंगे, है ना. सब लोग वानप्रस्थ लेना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए, है कि नहीं. तो ये सब पालन करना चाहिए. तो अगला श्लोक, नमे पार्थस्थ. अभी भगवान श्रेष्ठ वर्गों के बारे में बताया, अभी स्वयं के बारे में बोलते हैं. मैं भी पालन करता हूं बोलते हैं, इसको बोलते हैं. नमे पार्थास्थि कौन्ते कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावक्तम अवाप्तव्यम वर्तयेव च कर्मणि. हे प्रतापुत्र, तीन लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ. तो धर्म को क्यों पालन करते हैं? अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए धर्म को पालन किया. लेकिन जिसको काम, अर्थ, काम और मोक्ष का जरूरत नहीं है, वो क्यों करना चाहिए धर्म को पालन करना चाहिए? वो लोग भी करते हैं, दूसरों को स्थापित करते हैं. और भगवान को ये सब प्राप्त करने का जरूरत नहीं है. तो भगवान परिपूर्ण है अपने आप में. यहाँ पर श्री प्रभुपाद श्वेताश्वतर उपनिषद से उल्लेख करते हैं, तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम, तम देवतानां परमं च दैवतम, पतिं पतीनां परमं परस्ताद, विदाम देवं भुवनेश मीड्यम, न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तं न तत्समाशाभ्यधिकश्च दृश्यते, पराश शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रिया च. परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है, और विभिन्न लोकपालों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीव को परमेश्वर ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक है। अतः वे समस्त भौतिक नियताओं और नियंताओं से बढ़कर है और वे सबों द्वारा आराध्य है। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण है। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम है। उनके सारे इंद्रियां दिव्य है। उनकी कोई भी इंद्रिया अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है न ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी हैं। फलतः उनके सारे कार्य प्रकृति के अनुक्रमा के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस श्वेताश्चर उपनिषद में वर्णन किया गया है, तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम। तो सभी ईश्वरों में सर्वश्रेष्ठ है वो, परमम महेश्वरम। तम देवतानाम परमम च दैवतम। तभी जो देव लोकपाल है उनमें से सर्वश्रेष्ठ है। पतिम पतिनाम परमम परस्ताल। सो सभी स्वामियों में वो सबसे बड़ा स्वामी है। और परमं परस्ताल विदामदेव गुमणेश मीड्यम कहते हैं कि सबको नियंत्रण करने वाले उनके समान कोई नहीं होते हैं और सबके कारणों के कारण है। ये जो शब्द है ना, तस्य कार्यम करणम च विद्यते, वो महत्वपूर्ण है, इसलिए ये श्लोक को यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। तो वही नमे पार्थस्य नमे पार्थस्थ्य कर्तव्यम त्रिषि लोकेषु किंचन, इस तीनों लोकों में मेरा कोई कार्य नहीं, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, कुछ करने का जरूरत नहीं है। क्यों करने का जरूरत नहीं है? उनके शक्तियां उनको सभी कार्य कर देते हैं। पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। तो स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, इतने सारे शक्तियां हैं, सिर्फ वो इच्छा मात्र करने से सब कुछ क्या कर देता है, कार्य संपन्न हो जाता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें उसके बारे में चिंतन मनन करना पड़ेगा, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, और उसके बाद में हम लोगों को उस कार्य में सक्रिय होना पड़ेगा। जब कार्य में सक्रिय होने के बाद कई सारे चीज है उस फल को ऊपर मतलब दे इफेक्ट प्रभाव डालती है उसके ऊपर। जरूरी नहीं कि सिर्फ हम लोगों ने कार्य किया उसका फल मिलना चाहिए, जरूरी नहीं, अंत में भगवान की कृपा भी चाहिए। लेकिन भगवान को ऐसा नहीं होता है, सिर्फ वो इच्छा मात्र करने से सभी कार्य हो जाते हैं और उनको भौतिक जगत में उनको कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो ये जो श्लोक है और आगे के दो तीन चार श्लोकों में भगवान ये कह रहे हैं कि कैसे वो वर्णाश्रम से परे है, वर्णाश्रम से परे है। और अप्रत्यक्ष रूप से ये सिद्ध होता है कि भगवान तीन गुणों के परे है। कैसे ये? वर्णाश्रम गुण के अनुसार विभाजन किया गया, इसके कारण भगवान वर्णाश्रम के अंदर नहीं है, उससे परे है। इसका अर्थ क्या होता है कि वो गुणों के प्रभाव में नहीं रहते हैं, इसलिए उनको वर्णाश्रम धर्म को पालन करने का जरूरत नहीं है। और दूसरा क्या है, वो उस व्यवस्था को बनाने वाले हैं, तो वो इसमें कभी उसका इस व्यवस्था का अंग नहीं है, उसके परे है। जब राजा कोई नियम बनाते हैं तो राजा उस नियम के
नियम के अंदर नहीं आते हैं। आजकल के राजा आ सकते हैं, वो लोग भी बंध गया है नियम से, लेकिन पहले जमाने में ऐसे नहीं होता था। या वो लोग गलती किया तो भी ब्राह्मण लोग हुआ करते थे, उनको जला देते थे। ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण को तैयार करना है अभी हम, सब नेताओं को शाप देके जला देना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को करना है ना तैयार। कितने होंगे आप में से बताइए? वो ऐसा जीवन शैली होना चाहिए, उतना जरूरत नहीं है, लेकिन चाहे तो उनको करने के लिए भी तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान को कोई कार्य इन तीनों लोगों में, क्योंकि उनको कुछ प्राप्त करने का भी जरूरत नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में वर्णन करते हैं, चूंकि भगवान प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है ओके, और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना, उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीन लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर है शास्त्रों के, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। तो भगवान कभी, अभी क्षत्रिय का धर्म होता है कि वो लोग प्रजा का रक्षा करें, करना चाहिए। हम लोग दूसरे अध्याय में हम लोगों ने चर्चा किया, क्षत्रिय क्षत्रायते इति क्षत्रिय, तो प्रजा को रक्षा करने के लिए वो धर्म, वो शास्त्र शस्त्र को भी उपयोग करते हैं और ऐसे वो राज्य करते हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में क्यों आए हैं वो? क्योंकि क्षत्रिय धर्म को दर्शाने के लिए। हालांकि उन्होंने क्या निश्चय किया, मैं कभी भी शत्रु उठाऊंगा नहीं, क्योंकि सभी को पता था कि भगवान वो भगवान है, वो शस्त्र उठाएंगे तो कैसे होगा वो? उठाएंगे तो जैसे एक गांव का लड़का वो क्रिकेट खेल रहा है और सचिन उसके बैटिंग कर रहा है, बॉल फेंक रहा है और सचिन बैट, ऐसा हो जाएगा। भगवान शस्त्र उठाएंगे तो उनके सामने कोई नहीं रहेगा, वो भी एक नियम होता है, समान योद्धाओं के बीच में युद्ध होता है। या अगला श्लोक, यदि अयम न वर्तेयम् जातु कर्मेण्यतेन्द्रतः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। For if I ever fail to engage in carefully performing prescribed duties, O Partha, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों में सर्वा सावधानी पूर्वक न करूँ तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे, लोग करेंगे। भगवान कृष्ण भी पालन नहीं किया, क्यों हमें पालन करना चाहिए, है ना? तो ऐसे लोग बोलेंगे, इसलिए वो भी पालन नहीं करेंगे, तो सब उनके जैसे उनका ही पथ को अनुगमन करेंगे। इसलिए मैं दूसरों को स्थापित करने के लिए मैं ये भी करता हूँ, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार है जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। तो सभ्य व्यक्ति मतलब ये सभी वर्णाश्रम धर्म में या कुल धर्म है उसको पालन करना चाहिए, नहीं तो वो लोग सभ्य नहीं माना जाता है। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि वे धर्म का स्थापना करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठस्त तद ये वे करो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्थ धर्म वर्तते। तो भगवान यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने के लिए प्रकट होते हैं। अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया, अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हें के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। कौन से श्रीमद् भागवत में कहां पर कहां पर 70th, no? What is that? 62nd? What is the title of that? Title? Usme kaam hai Bhagwan ke alawa. 71st chapter. In this chapter, 70th. Krishna book. There is some difference, I think. So, 70th adhyay koliye. और पढ़ी है उसको, अब ये थोड़ा कृष्णा बुक से पढ़ेंगे, थोड़ा आनंद रस आना चाहिए ना, लेकिन ये कर्म 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 करके प्रभुपाद अच्छा वहाँ पर भी अच्छी तरह से पिटाई करते हैं। हाँ, व्हाट हैपन्ड? सेवेंटी सुदामा का है, 61, 71, 71, 71, 71, 71। क्या है?
भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुदाम ब्राह्मण को बलिदान
71 और उसके पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे पीछे, यू आर ओपनिंग 81 एक्चुअली 70 यू हैव ओपन 80 एंड यू आर टेलिंग दैट इट इज 70। व्हाट डिड यू लर्न इन द स्कूल एक्चुअली? बेटर ज्वाइन अवर ग्रुप। That's what I'm saying, join Gurukula better. What did you do? You are from Hindi world. You see, no, it's just by this time we could have read, we have to cover a lot of things actually. This is just, my God, I thought he will do it very fast. They were writing notes, I thought he doesn't write, I have engaged him to read. Yes, it is life. Thomas.
71
पहले क्या है देखिए, 70 मैंने बताया था, क्या है मैंने बताया ना, 70 बार रीड रीड लाउडली सुनिए, अच्छा है, बहुत अच्छा है, सुनिए सुनिए सुनिए।
वैदिक मंत्रों से ज्ञात होता है कि श्री भगवान के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, न तस्य कार्यं करणं च विद्यते।
तो यही श्लोक वहाँ पर भी उल्लेख कर रहे हैं ना, इस तात्पर्य में, इसके पहले के तात्पर्य में जो प्रभुपाद जी ने उल्लेख किया था।
यदि भगवान के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है तब हम उनके कार्यकलापों के विषय में चर्चा ही कैसे कर सकते हैं। पूर्व अध्याय से स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण के सदस्य कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। हमें इस तत्व को स्पष्टता समझना चाहिए। भगवान के कार्यकलापों का अनुसरण करना आवश्यक है किंतु उनका अनुकरण नहीं किया जा सकता। उदाहरण, गृहस्थ के रूप में श्री कृष्ण के आदर्श जीवन का अनुकरण किया जा सकता है किंतु कोई यदि अनेक रूपों
में उसको अनुकरण किया जा सकता है, अनुसरण किया जा सकता है। इंग्लिश एनीवन हैज सो व्हाट ही हैज रिटन प्रॉपर छत्र
फॉर एग्जांपल कृष्णा आइडियल लाइफ इज हाउ गोइंग टू कैन बी फॉलोड
फॉलोड मींस इट शुड बी अनुसरण ओके नोट डाउन दिस हिंदी मिस्टेक यू रीड लेटर यू कैन रीड कर दो मीटिंग लिस्ट कृष्णा बुक 70
अनेक रूपों में विस्तारित होकर उनका अनुकरण करना चाहे तो यह संभव नहीं है। अतः हमें यह सदैव स्मरण रहे कि यद्यपि श्री कृष्ण मनुष्य का अभिनय अर्थात नर्वत लीलाएं करते हैं तथापि अपनी श्री भगवान की स्थिति बनाए रखते हैं। एक साधारण मनुष्य के
तो पिछले अध्याय क्या था, वो नारद मुनि वो द्वारका में आए थे ना, वो अलग अलग जो महल में भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे वो सभी देखा उन्होंने। एक महल में वो रुक्मिणी के साथ वो खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, दूसरे में कोई किसी को रिसीव कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह पर एक ही साथ में वो विद्यमान थे। वो ऐसे कार्य को हम लोग अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन हमें उनको अनुसरण करना चाहिए। गृहस्थ लोग
एक साधारण मनुष्य के समान श्री कृष्ण के उनकी पत्नियों के साथ व्यवहार का हम अनुसरण कर सकते हैं, किंतु एक समय में 16,000 से भी अधिक पत्नियों के साथ उनके व्यवहार का हम अनुकरण नहीं कर सकते। निष्कर्षता जिस प्रकार उन्होंने अपनी दिनचर्या का प्रदर्शन किया, आदर्श गृहस्थ बनने के हेतु हमें श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, परंतु जीवन की किसी भी अवस्था में हमें उनका अनुकरण नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,000 पत्नियों के साथ विश्राम करते थे, किंतु प्रातःकाल सूर्योदय से 3 घंटे पूर्व उठ जाते थे। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार मुर्गे का बोलना ब्रह्म मुहूर्त के समय की सूचना देता है।
तो सुबह जल्दी उठ जाते थे भगवान, पहला चीज वो कर रहे थे।
घड़ियों की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे ही मुर्गा प्रातःकाल बोलता है हमें समझ लेना चाहिए कि अब उठने का समय हो चुका है।
जरूरत नहीं है घड़ियों का, घड़ी बनाना इतना सारा घड़ी बना बना के उसको एडवर्टाइज करके वो सेल करने का जरूरत नहीं है। अपने आप प्रकृति परिपूर्ण है, नेचुरल वो अलार्म क्लॉक है। देखो समाज किस ओर जा रहा है ना, या उसको मार दिया ये लोग, फैक्ट्री बना के उसको मार देते हैं ना।
उस ध्वनि को सुनकर श्री कृष्ण सैया से उठ जाते थे, परंतु उनका प्रातः उठना उनकी पत्नियों को रुचिकर नहीं था। श्री कृष्ण की पत्नियां उनमें इतनी आसक्त थी कि सैया में वे श्री कृष्ण का आलिंगन किए रहती, परंतु जैसे ही मुर्गे बोलते तो श्री कृष्ण की पत्नियां उदास हो जाती और मुर्गे की रुचि की निंदा करने लगती। प्रत्येक राजमहल के उद्यान में पारिजात पुष्प लगे हुए थे, पारिजात कोई कृत्रिम पुष्प नहीं। ईश्वर रहे कि श्री कृष्ण ने पारिजात वृक्षों को स्वर्ण से लाकर सभी महलों के उद्यानों में लगाया था। प्रातःकालीन मंद वायु पारिजात पुष्प की सुगंध को प्रसारित करती तथा श्री कृष्ण निद्रा से उठने के पश्चात उनकी सुगंध का रसास्वादन करते। इस सुगंध के कारण मधुमक्खियाँ भिनभिनाना आरंभ कर देती और पक्षी भी मधुर कलरव आरंभ कर देते। संपूर्ण रूप से उस ध्वनि को सुनकर ऐसा प्रतीत होता कि बंदीजन एकत्र होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने में संलग्न है। यद्यपि श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी श्रीमती रुक्मिणी देवी को ज्ञात था कि ब्रह्म मुहूर्त संपूर्ण दिवस का सर्वाधिक शुभ समय है, तथापि ब्रह्म मुहूर्त के आगमन पर वे खिन्न होती क्योंकि वे श्री कृष्ण के इस संघ का त्याग नहीं करना चाहती थी। श्रीमती रुक्मिणी देवी की भिन्नता के पश्चात भी ब्रह्म मुहूर्त का आगमन होते ही भगवान श्री कृष्ण उठ जाते। आदर्श गृहस्थ भगवान श्री कृष्ण के इस आचरण से शिक्षा लेनी चाहिए कि किस तरह उसे प्रातःकाल उठना चाहिए, चाहे वह कितनी ही सुविधाजनक स्थिति में क्यों ना लेटा हो।
हाँ और बढ़िया है,
विश्राम करके उठने के पश्चात श्री
कृष्ण This is cheating, it is. Read English, English very nice, cutting it is.
There is a little, like,
And I guess how would you should learn from the behavior of Lord Krishna how to write the name in the morning, having come, however comfortable he may be lying in bed embraced by his wife.
कितना भी सुविधाजनक हो, सुविधाजनक वो बिस्तर में अपने स्त्री के स्त्री से आलिंगित करके सोया हो, फिर भी वो सुबह होते ही उठ जाना चाहिए उसको, ऐसे बोलते प्रभुपाद। अपने पत्नी के द्वारा आलिंगित करके कितना भी अच्छी तरह से सोया हो, सुबह होते ही उठ को उठना चाहिए, ऐसे आदर्श ग्रस्त को ऐसे बोलते। इसके लिए मैं उसको पढ़ने के लिए बोला, वही नहीं है उसमें। नहीं पढ़िए पढ़िए।
विश्राम करके उठने के पश्चात श्री कृष्ण अपने मुख भुजाओं तथा चरणों को धोते तथा तत्काल बैठकर स्वयं का ध्यान करने लगते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें स्वयं पर ही ध्यान करना चाहिए, हमें श्री
कृष्ण पुस्तक वितरण करना है, अच्छी तरह से पुस्तक को छापना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले एक जो मिस्टेक है इट विल मार द बुक, ही सेड वन मिस्टेक विल मार द बुक। एक हम लोग बुक में गलती करते हैं तो वो पूरा बुक का वो विषय ही नष्ट हो जाता है। ऐसा तो हमें ऐसे ये सब चीज़ अच्छी तरह से करना चाहिए, ऐसे हम लोग ये सब चीज़ करना चाहिए, सिर्फ वितरण करना ही नहीं। ओके,
हमें श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, वही वास्तविक ध्यान है। श्री कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण है, अतः वे हमें शिक्षा दे रहे थे कि ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग श्री राधा कृष्ण का ध्यान करने के लिए करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत संतोष का अनुभव करते। उसी प्रकार यदि हम ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग श्री राधा तथा कृष्ण पर ध्यान करने के लिए करेंगे तो हमें भी दिव्य आनंद का अनुभव होगा और हम संतुष्ट हो जाएंगे। प्रातःकाल हम यह भी चिंतन करें कि किस प्रकार श्रीमती रुक्मणी तथा श्री कृष्ण ने आदर्श गृहस्थ के रूप में संपूर्ण मानव समाज को यह शिक्षा दी कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तत्काल कृष्ण भावना व्रत में संलग्न हो जाना चाहिए। श्री राधा कृष्ण के शाश्वत रूपों पर ध्यान करने तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने में कोई अंतर नहीं है। जहाँ तक श्री कृष्ण के द्वारा ध्यान करने का प्रश्न है तो उनके पास स्वयं पर ध्यान करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। ध्यान का विषय ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान होते हैं, परंतु श्री कृष्ण स्वयं तीनों हैं। वे श्री भगवान है, अंतर्यामी परमात्मा श्री कृष्ण का एक स्वांश है तथा सर्वव्यापक ब्रह्म ज्योति उनके दिव्य शरीर की अंग कांति है। अतः श्री कृष्ण सदैव एक है एवं उनके लिए कोई अंतर नहीं है। सामान्य जीव तथा भगवान श्री कृष्ण में यही भेद है, जीव के लिए भिन्नताएं हैं। सामान्य जीव अपने शरीर से भिन्न है तथा वह जीवों की अन्य योनियों से भिन्न है, मानव अन्य मानवों से तथा पशुओं से भिन्न है। उसके स्वयं के शरीर में भी विभिन्न अंग प्रत्यंग हैं। हमारे हाथ तथा पैर हैं, परंतु हमारे हाथ पैरों से भिन्न है। पैर की भांति हाथ कार्य नहीं कर सकते, ना ही हाथ की भांति पैर कर सकते हैं। नेत्र के समान कान नहीं देख सकते, ना ही कान की भांति नेत्र सुन सकते हैं। इन सभी भिन्नताओं को तकनीकी दृष्टि से स्वजातीय विजातीय कहा जाता है। यह शारीरिक सीमा जिससे शरीर का एक भाग दूसरे भाग की भांति कार्य नहीं कर सकता, श्री भगवान में पूर्णतया अनुपस्थित है। उनके शरीर में तथा उनमें कोई अंतर नहीं है, वे पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक हैं। अतः उनके शरीर में तथा उनकी आत्मा में कोई भी भौतिक भेद नहीं है। उसी प्रकार अपने लाखों अवतारों और अंशों से वे भिन्न नहीं हैं। श्री बलदेव श्री कृष्ण के प्रथम अंश हैं और श्री बलदेव के द्वारा श्री संकर्षण श्री वासुदेव श्री प्रद्युम्न एवं श्री अनिरुद्ध के रूपों का विस्तार होता है। श्री संकर्षण से पुनः श्री नारायण का विस्तार होता है और श्री नारायण से श्री संकर्षण श्री वासुदेव श्री प्रद्युम्न तथा श्री अनिरुद्ध के द्वितीय चतुर्भुज का विस्तार होता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण के अनगिनत विस्तार है, परंतु वे सभी एक हैं। श्री कृष्ण के अनेक अवतार हैं, जैसे कि श्री नृसिंहदेव वराह मत्स्य एवं कच्छप अवतार अश्व परंतु श्री कृष्ण के निराकार द्विभुजी आदि स्वरूप में तथा इन विशाल पशुओं के रूप के अवतारों में कोई भेद नहीं है और ना ही उनके शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में कोई भेद है। उनके चरण कमल चरणों के समान कार्य कर सकते हैं, उनके नेत्र कर्ण के समान कार्य कर सकते हैं अथवा उनकी नासिका शरीर के किसी अन्य अंग की भांति कार्य कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुगंधों को ग्रहण करना, भोजन एवं श्रवण करना एक ही है। हम जीव सीमित हैं, अतः शरीर के विशेष अंग का उपयोग विशेष उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, परंतु श्री कृष्ण के लिए इस प्रकार का कोई भेद नहीं है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अंगान ये सकलेन्द्र वृत्ति, वे अपने शरीर के एक अंग के कार्य को किसी भी अंग के द्वारा संपादित कर सकते हैं। अतः श्री कृष्ण एवं उनके व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वे समग्र रूप से परिपूर्ण हैं। अतः जब वे ध्यान करते हैं तो वे स्वयं का ही ध्यान करते हैं। साधारण मनुष्यों के द्वारा सोहम ब्रह्म के रूप में किया जाने वाला आत्मध्यान केवल अनुकरण है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं का ध्यान कर सकते हैं क्योंकि वे परिपूर्ण हैं, किंतु हम उनका अनुकरण करते हुए स्वयं का ही ध्यान नहीं कर सकते। हमारा शरीर एक उपाधि है, श्री कृष्ण का शरीर उपाधि नहीं है। श्री कृष्ण का शरीर भी श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण में किसी भी विजातीय वस्तु का अस्तित्व नहीं है। श्री कृष्ण में जो कुछ है वह श्री कृष्ण ही है। अतः वे परम अविनाशी पूर्ण अस्तित्व अर्थात परम सत्य है। भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व सापेक्ष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है, परंतु श्री कृष्ण परम सत्य है। अपने अस्तित्व के लिए श्री कृष्ण केवल स्वयं पर निर्भर करते हैं, किंतु हमारा अस्तित्व सापेक्ष है। उदाहरणार्थ सूर्य चंद्रमा तथा विद्युत के प्रकाश होने पर भी हम देखने में समर्थ होते हैं, अतः हमारी दृष्टि सापेक्ष है एवं सूर्य चंद्रमा तथा विद्युत के प्रकाश भी सापेक्ष है। उन्हें प्रकाशित केवल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम उन्हें ऐसा ही देखते हैं। निर्भरता तथा सापेक्षता का अस्तित्व श्री कृष्ण में नहीं है। उनके कार्यकलाप किसी की प्रशंसा पर निर्भर नहीं करते, ना ही वे किसी अन्य की सहायता पर निर्भर करते हैं। वे सीमित काल एवं देश के अस्तित्व से परे हैं। वे काल तथा देश के अस्तित्व, अतः उनको सीमित कार्यकलापों वाली माया के भ्रम से ढका नहीं जा सकता। वैदिक साहित्य से हमें ज्ञात होता है कि श्री भगवान में विविध शक्तियाँ विद्यमान है। सभी शक्तियों का उद्गम उन्हीं से हुआ है।
Skip 2-3 paragraphs. After his meditation, Lord would regularly bathe early in the morning.
ध्यान के पश्चात से भगवान,
तो पहला कार्य क्या है? वो अपने गधे से उठ गए भगवान, वो पहला कार्य है। फिर वो सभी सुगंध है उसको आस्वादन करते थे, फिर हाथ पांव धोकर वो ध्यान में बैठ जाते थे। फिर उसके बाद में क्या करते हैं भगवान?
ध्यान के पश्चात से भगवान प्रातः काल नियमित रूप से स्वच्छ शुद्ध जल में स्नान करते, तत्पश्चात वे स्वच्छ वस्त्र धारण करते, स्वयं को चादर से ढकते और फिर वैदिक धार्मिक कार्यों में स्वयं को संलग्न करते। उनके अनेक धार्मिक कार्यों में प्रथम कार्य यज्ञ अग्नि में नैवेद्य अर्पित करना तथा चुपचाप गायत्री मंत्र का जाप करना होता। आदर्श गृहस्थ के रूप में श्री कृष्ण ने गृहस्थ के सभी धार्मिक कार्यों का यथा रूप में पालन किया। जब सूर्योदय दृष्टिगोचर होता तब श्री भगवान सूर्यदेव को विशेष प्रार्थनाएं अर्पित करते। वैदिक साहित्य में कथित सूर्यदेव तथा अन्य देवताओं को भगवान श्री कृष्ण के शरीर के विभिन्न अंगों के रूप में वर्णित किया गया है। और गृहस्थ का यह कर्तव्य है वह देवताओं एवं महर्षियों तथा पूर्वजों के प्रति सम्मान रखे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, इस विश्व में पालन करने के हेतु श्री भगवान के पास कोई विशेष कर्तव्य नहीं है, फिर भी वे इस प्राकृत जगत में आदर्श जीवन व्यतीत करने वाले साधारण व्यक्ति की भांति कार्य करते हैं। वैदिक कर्म कांडी नियमों के अनुरूप श्री भगवान देवताओं को सम्मान अर्पित करते। वह नियम जिसके द्वारा देवताओं तथा पूर्वजों को पूजा जाता है उसे तर्पण कहते हैं। तर्पण का अर्थ है प्रसन्न करना। किसी व्यक्ति के पूर्वज को भले ही किसी अन्य ग्रह पर शरीर ग्रहण करना पड़े, परंतु इस कल्पक प्रणाली का पालन करने से वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। गृहस्थ का यह कर्तव्य है कि
तो और यहाँ पर भगवान ने कृपा जी क्या बोलते हैं, एज इट इज स्टेटेड इन भगवद गीता लॉर्ड हैज नो स्पेसिफिक ड्यूटी। आरंभ कैसे होता है वो पैराग्राफ?
जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, इस विश्व में पालन करने हेतु श्री भगवान के पास कोई विशेष कर्तव्य नहीं है।
कहाँ पर भगवद गीता में वर्णन कर किया है? अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कैसे देखिए वो एक दूसरे से समझ। यहाँ पर प्रभुपाद जी वहाँ उल्लेख करते हैं भागवत में उनके कार्यकलाप का, और भागवत के उनके जब कार्यकलाप में उसको यहाँ पर उल्लेख
गृहस्थ का यह कर्तव्य है कि वह अपने परिवार के सदस्यों को सुखी रखे एवं इस तर्पण प्रणाली का पालन करने से वह अपने पूर्वजों को भी सुखी रख सकता है। पूर्ण अनुकरणीय गृहस्थ होने के रूप में भगवान श्री कृष्ण इस तर्पण प्रणाली का पालन
करते हैं। What is the meaning of अनुकरणीय? इस एग्जाम्पलरी एज द परफेक्ट एग्जाम्पलरी हाउस होल्डर मतलब अनुसरणीय एक्चुअली जस्ट दे हैव मेड अ मेस ऑफ ट्रांसलेशन कंप्लीटली रॉन्ग आइडियाज दे विल गेट पीपल बाय रीडिंग दैट दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड दे विल नॉट गेट अ टेस्ट आल्सो नो टू रीड राइट आई मीन हु विल गेट टेस्ट टू रीड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स।
पूर्ण अनुसरणीय गृहस्थ होने के रूप में भगवान श्री कृष्ण इस तर्पण प्रणाली का पालन करते तथा अपने परिवार के ज्येष्ठ सदस्यों की सादर वंदना करते हैं। दान में उनका अगला कर्तव्य ब्राह्मणों को गौवें का दान करना था। भगवान श्री कृष्ण कम से कम 13,084 गायें देते थे। सारी गाय रेशमी चादर तथा मोती
13,084 गाय देते थे हर रोज एक गाय।
सारी गाय रेशमी चादर और मोतियों की मालाओं से सुसज्जित होती। उनके सींग स्वर्ण पत्र से ढके हुए होते तथा उनके खून चांदी के बने होते। उनसे प्रथम जन्मे बछड़ों के उनके समीप होने के कारण वे दूध से परित हुई थी और वे बहुत ही शांत एवं सौम्य थी। जब गाय ब्राह्मणों को दान में दी जाती तब ब्राह्मणों को सुंदर रेशमी वस्त्र दिए जाते। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ब्राह्मण को एक मृग चर्म एवं तिल के पर्याप्त दाने दिए जाते। श्री भगवान को सामान्यतः गो ब्राह्मण हितायचा कहते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका पहला कर्तव्य ब्राह्मणों तथा गायों के कल्याण का ध्यान रखना। अतः श्री कृष्ण गायों को भरपूर अलंकारों एवं उपकरणों सहित ब्राह्मणों को दान में दिया करते थे। तत्पश्चात सभी जीवों के कल्याण की आकांक्षा करते हुए वे दूध अग्नि मधु की स्वर्ण एवं रत्नों जैसे सौभाग्यशाली वस्तुओं का स्पर्श करते हैं। यद्यपि अपने दिव्य शरीर की पूर्ण आकृति के कारण श्री कृष्ण प्रकृति से अति सुंदर हैं तथापि वे स्वयं पीले रंग के वस्त्रों को धारण कर लेते तथा कौस्तु मणियों की कंठी पहन लेते, फूलों की माला पहनते, अपने शरीर पर चंदन का लेप करते और स्वयं को सौंदर्य वर्धक सामग्री एवं आभूषणों से सुसज्जित करते। ऐसा कहा जाता है कि श्री भगवान के दिव्य शरीर का स्पर्श पाते ही सभी आभूषण स्वयं सुंदर बन जाते हैं। इस प्रकार स्वयं को सुसज्जित करने के पश्चात श्री भगवान गायों बछड़ों की संगमरमर की मूर्तियों को देखते और श्री सिद्धि तथा अन्य देवताओं के मंदिरों के दर्शन करते। ऐसे अनेक ब्राह्मण थे जो उपहार करने से पूर्व श्री भगवान के दर्शन करने के लिए नित्य आते हैं।
उपहार करने से क्या है और
ऐसे अनेक ब्राह्मण थे जो उपहार करने से पूर्व श्री भगवान के दर्शन करने के लिए नित्य आते हैं।
ठीक,
ब्राह्मण उनको देखने के लिए उत्सुक थे एवं श्री भगवान उनका स्वागत करते थे। उनका अगला कर्तव्य नगर तथा राजमहल में स्थित विभिन्न जाति के लोगों को सुखी बनाना था। श्री भगवान उनकी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति करके उन्हें प्रसन्न करते एवं जब वे उन्हें प्रसन्न देखते तो वे स्वयं प्रसन्न हो जाते। फूलों की मालाएं, सुपारियां, चंदन और अन्य सुगंधमय सौंदर्यवर्धक वस्तुओं जिन्हें श्री भगवान के प्रति अर्पित किया जाता था सर्वप्रथम ब्राह्मणों एवं परिवार के देश सदस्यों के पश्चात रानियों तथा मंत्रियों को प्रस्तुत की जाती थी। उसके बाद यदि कुछ शेष बच जाता तो वे उसे अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए रख लेते। जब तक श्री भगवान अपनी दिनचर्या को समाप्त करते तब तक उनका साथी दारू अपने अद्भुत रथ को लेकर आता और श्री भगवान के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता। इससे श्री भगवान को संकेत मिल जाता कि रथ तैयार है, यात्रा करने के लिए वे अपने राजमहल से बाहर निकल जाते। तत्पश्चात उद्धव जी एवं सात्विकी के साथ श्री कृष्ण रथ पर चढ़कर सवारी करते, ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्यदेव अपनी चमकीली किरणों को विश्व के धरातल पर डालते हुए प्रातःकाल अपने रथ पर चढ़कर सवारी करते हैं। जब श्री भगवान राजमहलों से जाने लगते तो सभी रानियां उनकी ओर स्त्रीचित चेष्टाओं से देखती। श्री भगवान उनके अभिवादनों का मुस्कुराहटों से उत्तर देते। श्री कृष्ण के द्वारा ऐसा करने से उनके हृदय में इतना आकर्षण उत्पन्न हो जाता कि वे श्री भगवान से तीव्र वियोग का अनुभव करती। तत्पश्चात श्री कृष्ण सुधर्मा नामक सभा महल में जाते आते। हमें यह स्मरण है कि सुधर्मा सभा भवन को वैकुंठ लोक से जाकर द्वारका में पुनर्स्थापित किया गया था। सभा भवन का विशिष्ट महत्व यह था कि जो भी इसमें प्रवेश करता वह धूप प्यास शोक मोह जरा एवं मृत्यु इन छह प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता। ये भौतिक अस्तित्व के जाल हैं और जब तक व्यक्ति सुधर्मा सभा भवन में रहता तब तक वह इन छह भौतिक जालों से पीड़ित नहीं होता था। श्री कृष्ण सभी 16,000 महलों से विदाई लेते थे और पुनः भी एक होकर सुधर्मा सभा भवन में यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ जुलूस में प्रवेश करते। सभा भवन में प्रवेश करने के पश्चात वे उच्च शानदार सिंहासन पर बैठ जाते और उनसे दिव्य ज्योति की चमकती किरणें निकलती दिखाई देती। यदुवंश के महान वीरों के समक्ष श्री कृष्ण आकाश में अनेकानेक ग्रहों से घिरे हुए पूर्ण चंद्रमा के सदस्य रखते। सभा भवन में सूर्यपुर विदूषक नर्तक संगीतकार एवं नर्तकियां थी और जैसे ही श्री भगवान सिंहासन पर बैठते हुए उन्हें आनंदित करने तथा प्रसन्नचित करने के लिए अपने अपने कार्यों को आरंभ कर देते। सर्वप्रथम विदूषक कुछ इस प्रकार बात करते कि श्री भगवान और उनके सहयोगी उस परिहास का आनंद लेते, इससे चित्त प्रसन्न हो उठता। तत्पश्चात प्रभावशाली नट अपना अभिनय करते और नर्तकियां अपनी कलात्मक क्रिया का प्रदर्शन करती। इन सभी कार्यों के साथ साथ मृदंग ढोल वीणा बांसुरी घंटियां एवं बखावच का वादन होता। इन संगीत में तरंगों के साथ साथ संघ की शुद्ध ध्वनि को भी संलग्न कर दिया जाता। सूत एवं मागध कहने वाले सुनिपुण गायक गीत गाते और दूसरे अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करते। इस प्रकार भक्त होने के रूप में वे श्री भगवान की सादर वंदना करते। कभी कभी सभा में उपस्थित सुशिक्षित ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते और प्रेक्षकों को अपने ज्ञान के अनुसार उन्हें समझाते तथा कभी कभी सुप्रसिद्ध महाराजाओं की गतिविधियों के प्राचीन ऐतिहासिक वर्णन का पाठ करते। श्री भगवान तथा उनके सहयोगी उन्हें सुनकर अत्यंत प्रसन्न होते।
हरे कृष्ण। तो ऐसे भगवान के कार्यकलाप हुआ करते थे। उन्होंने अपने उदाहरण से दिखाया कैसे क्षत्रिय को होना चाहिए, कैसे गृहस्थ होना चाहिए, यहाँ पर जैसे बताया गया। तो अगला श्लोक लेंगे। उत्सिते योरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम् If I did not perform prescribed duties, all these worlds would be put to ruination. I would be the cause of creating unwanted population and I would thereby destroy the peace of all living beings. So Bhagavan bolte hai ki varna sankara. To अर्जुन का एक बात था कि इस युद्ध में लड़ेंगे तो क्या होगा, वर्ण संकर का उत्पत्ति होगा। लेकिन भगवान बोलते हैं हमारे जो नियत कर्म हैं नहीं करेंगे तो वर्ण संकर का उत्पत्ति होगा, ऐसे बता रहे। तो है ना,
पहले अध्याय में उन्होंने ऐसे बताया था ना अर्जुन ने कि वर्ण संकर का उत्पत्ति होगा करके, लेकिन बाहर भगवान यहाँ पर वह बोल रहे हैं कि संकरस्य चकर्ता स्याम उपान्याम इमाम प्रजाः, कि हम लोग नियत कर्म नहीं करेंगे तो वर्ण संकर का उत्पत्ति होगा। वर्ण संकर क्या है बताइए, वर्ण संकर का क्या अर्थ क्या होता है? जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के लिए योग्य नहीं है वो लोग, उनको वर्ण संकर कहते हैं। वो लोग बहुत पतित लोग हैं, उसके नराधम वर्णाश्रम में जो योग्य नहीं है उनको नराधम भी कहा गया। नराधम मतलब सो दे आर जस्ट टू लेगेड एनिमल्स, नरों में अधम है वो लोग, सिर्फ दो पांव। उनके और पशु के बीच में क्या अंतर होता है? पशुओं को चार अपपांव होते हैं और इनको दो पांव होते हैं, बस वही अंतर होता है। नराधम उनको ही वर्ण संकर कहते हैं। आधुनिक जमाने में सब लोग नराधम, तो अभी सभी वर्ण संकर है ना, किसी को पता नहीं है क्या वर्ण है क्या आश्रम है। तो कुछ आश्रम वर्ण कुछ होना चाहिए करके किसी को मालूम नहीं।
All these words यहाँ पर अनुवाद किया, ये सारे लोग अनुवाद, if I don't perform then all these words लोग सारे लोग
लोग लिखा गया है, लोग होना चाहिए ना। या तो भगवान जब प्रकट हो जाते हैं इसलिए वो लोग वो सभी नियमों को पालन करते हैं। हम लोगों ने देखा उसको लंबा, हम लोगों ने सुना कृष्णा बुक से, क्योंकि वो जीवों के पिता है उसके कारण उनको मार्गदर्शन करने के लिए ये सभी जिम्मेदारी लेते हैं। पिताजी नहीं करते हैं तो बच्चे कैसे करेंगे, है ना? आजकल ऐसे होता है ना, बहुत सारे लोग माता पिता आके बोलते हैं प्रभु जी हमारा बच्चा हमारा बात ही नहीं सुनता है। माता जी पिताजी आप पहले कुछ धर्म का पालन कीजिए तभी वो लोग आपको बात सुनेंगे। पहले जमाने में बहुत ऐसा होता था, वो लोग बहुत क्योंकि वो धार्मिक हुआ करते थे, बच्चे लोग चुपचाप पालन करते थे जो भी माता पिता बोल रहे। अभी आज अभी छोटा है रहता है, अभी 4-5 साल का रहता है, वो कूद के बैठ जाता है उसके ऊपर और टेरराइज कर देता है। अभी धीरे धीरे बहुत मुश्किल होगा, ऐसे नियम आएंगे ना ह्यूमन राइट्स करके, चाइल्ड राइट्स। अमेरिका में ऐसे होता है बच्चा वो माता पिता बच्चा को कुछ नहीं मानेगा बच्चा उनको जेल में भी डाल सकता है, ऐसे नियम होता है। बच्चा रोया तो घर में माता पिता जेल में जा चले जाए, तो चाइल्ड अब्यूज बोलेंगे उसको। तो ऐसे खतरनाक नियम आए देंगे, तो ये सब नरकीय जीवन बन जाता है। तो अच्छा है जब माता पिता धर्म को पालन करेंगे बच्चे लोग भी चुपचाप पालन करेंगे उसको। तो ऐसे इसलिए भगवान वो धर्म को पालन करके सिखा देते हैं, अभी आपको क्या करना चाहिए पालन करो। लेकिन फिर भी एक प्रश्न उठता है यहाँ पर, क्यों भगवान रासलीला किया, ऐसे प्रश्न होता है। तो लोग उसका अनुकरण करेंगे, ठीक है ना, भगवान ने किया है मैं भी करूँगा। आजकल वो दांडिया शुरू हुआ है ना, तो गुजरात से शुरू हुआ वो दांडिया है ना, गुजरात में शुरू, पहले वो गुजरात में क्या किया करते थे ना, गरबा डांस। तो उसके बाद बहुत सारा अबॉर्शंस होते हैं उसके बाद उस समय पर, तो कुछ डॉक्टर लोग वो सहायता करते हैं, समाज सेवा करते हैं अबॉर्शन करके। तो एनीवे ऐसे आता है। तो उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी श्रील प्रभुपाद यहाँ पर उन श्लोकों को, जो महान लोग हैं उनका हम लोगों को कार्यों को अनुगमन नहीं कर सकते, नहीं, उनको अनुकरण नहीं कर सकते, उनको अनुगमन करना चाहिए। नहीं तत् समाचर जातु मनसापि ह अनीश्वर विनश्यत तचरन मौड्याद यथारुद्रोब्धि जम विषम। तो जो लोग यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों को या उपदेशों को मात्र पालन करना चाहिए, उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताए गई विधि से उनके कार्यान्वित करेगा, फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों को अनुकरण न करे, उसे शिवजी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। तो जो लोग भगवान और उनके शक्ति प्रदत्त जो महापुरुष होते हैं उनका कार्य को हम लोग अनुकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा नष्ट हो जाएगा, वो विष पीने के समान है, तो उसको अनुकरण नहीं करना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, कुछ ऐसे शिवजी के भक्त है, वो बोलते हैं हम भोले बाबा का भक्त है करके बोलते हैं, और भोले बाबा ने क्या किया, सो क्या है वो, व्हाट इज दैट, गांजा, अच्छा गांजा पिया, हम भी पिए, हम पिया, कहाँ पर वर्णन है वो, ऐसे किसी को पता है, नहीं है, पुराणों में रहेगा वो, नहीं 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 वो मेरा क्या है, पुराणों में वो रहेगा, उसको लेकर वो लोग क्या कर रहा है, बोले बोले बाबा या भोलेनाथ को पूछे हैं, मैं हम लोग भी पिए ऐसे बोलते
प्रमुख श्लोक तो नहीं है, बीस भाग धतुरो किया है ऐसा लेकर अनुवाद हो, बीस भाग धतुरो ऐसा खाया है उसने, ऐसा लिखा है और एक प्रमाणिक नहीं, एक एक बात
तो ठीक है, वो प्रमाणिक नहीं है तो भी हम सिर्फ तर्क के दृष्टि तर्क से लेंगे तो भी, भोले बाबा ने क्या किया, भांग पिया, इसलिए मैं भी पीता हूँ बोले तो, भोले बाबा ने विष भी पिया, वो क्यों नहीं दे रहा,
सर्प का माला भी लगाया
है ना, तो उनको ऐसे पूछना चाहिए है ना, तो इसलिए ऐसे महान व्यक्तियों को अनुकरण नहीं करना चाहिए, उनको अनुसरण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद या इस श्लोक के वहाँ पर कृष्ण बुक में तात्पर्य भी देते हैं कि भगवान कृष्ण की लीलाओं को अनुकरण करने से पहले हमें अच्छा है कि भगवद गीता को हमें पालन करें, भगवदगीता तो या प्रभुपाद जी ऐसे भी कहा करते थे ना, पहले हमें भगवदगीता को अच्छी तरह से अध्ययन, भगवदगीता को पढ़े बिना हम लोग लीलाओं को पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं तो क्या होगा, निश्चित ही हम लोग भ्रमित हो जाएंगे, निश्चित ही भ्रमित हो जाए। तो पहले हमें भगवदगीता को करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक लिखा लेकिन कृष्णा बुक पूरी तरह से भगवदगीता के आधार पर ही है, स्टोरी भागवतम से है लेकिन पूरा फिलॉसफी उसमें क्या है, भगवदगीता फिलॉसफी। प्रभुपाद जी बोले वो उसको, दैट इज अवर ग्रेट प्रोपेगेंडा, उसको हम लोग बहुत वितरण कर सकते हैं, उसको ना लोगों को उसको पढ़ने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। सो कृष्ण बुक इज अवर ग्रेट प्रोपोगेंडा वर्क, ऐसे प्रभुपाद जी ने बताया। सो इसलिए रासलीला जो है हमें उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए, या इस ये हम लोग भगवान कृष्ण के जो दिनचर्या या कार्यकलाप है वो पढ़ रहे थे, उसके आरंभ में प्रभुपाद लिख रहे, उसके पहले के अध्याय में भगवान कृष्ण अलग अलग महल में क्या क्या कर रहे थे उसका वर्णन आता है, उनके कार्यों को, गृहस्थ के कार्यों को भी हम लोग क्या अनुकरण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हमें वो धर्म पालन किए हैं, हम भी उनके तरह धर्म पालन करना चाहिए, ऐसे हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो रासलीला हम लोग अनुकरण नहीं कर सकते हैं, वो सामान्य नहीं है, वो पूरी तरह से आध्यात्मिक है। तो जैसे यहाँ पर गृहस्थ और लीला में भी भगवान 16,108 रूपों में विस्तारित होकर हर एक महल में हर एक रानी के साथ वो निवास किया करते थे, जब वो बाहर आते थे सुधर्मा महल में जाने के लिए, वो राज्य के कार्यों को संभालने के लिए, सभी जो 16,108 एक हो जाते थे, एक भगवान बन जाते, एक कृष्ण बन जाते थे, फिर वो महल में जाते थे। फिर जब वापस आते थे घर अपने रानियों के घर में, फिर 108 रूपों में विभाजित होके या प्रकट होके वो लोग वो प्रवेश करते। ये सब क्या हम लोग कर सकते? और रासलीला में भी हर एक गोपी के साथ वो नाच रहे थे, हर एक गोपी सोच रहे थे भगवान सिर्फ मेरे साथ नहीं नाच रहे थे। क्या हम लोग उसको ऐसे कर सकते हैं? ऐसे तुम्हें एक पत्नी को संभालने के लिए इतना मुश्किल हो रहा है और रासलीला करना चाहता है? कलयुग में तो एक प्रभुपाद जी कहते हैं, कलयुग में तो एक घर चलाना मतलब एक बड़ा साम्राज्य को चलाने के समान है, होता है ना। जो पत्नी को उसके आभूषण, उसके कपड़े और बहुत सारा खाने के चीज और पूरी तरह से इंद्र तृप्ति प्रदान कर सकता है, वही ग्रस्त बनना चाहिए, तो मुश्किल है, हमारे बस की बात नहीं। अच्छा है, हम नहीं कर रहे हैं। मनोरज लाफिंग। तो प्रभुपाद जी कुछ बोलते हैं उसके बारे में। प्रभुपाद जी कहते हैं, दिन का डाकिनी रात का बगिनी, फलक फलक लहू चूसे। दिन का डकैत है वो, और रात में बागिनी बन जाते हो, बागिनी हम फलक फलक लहू चूसे। दिन में जो मेहनत करके पैसा देता है उसको हर के लेके जाते हैं डकैती करके, और रात को वो वीर के रूप में उसको कुंभ चूसती है, ये फलक फलक लहू चूसे। स्त्री है बस, हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं, अनुकरण करना और अनुसरण करना दोनों एक ही स्तर पर नहीं है, तो हमें अनुसरण करना चाहिए भगवान को, अनुकरण नहीं करना चाहिए। फिर बहुत सारे ऐसे अवतार है जो भगवान को अनुकरण करना चाहते हैं। अवतार भी क्या करना चाहिए? ऐसे गोवर्धन उठाने के जैसे बहुत कार्य है, अमानवीय कार्य है, उनको करना चाहिए। तो प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं, तो देर आर मेनी इनकार्नेशन ऑफ गॉड विदाउट द पावर ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार है जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती है, मतलब वो वास्तविक अवतार नहीं है, तो सिर्फ वह तथाकथित अवतार है ऐसे बोलते, ठीक है। सो सत्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांसतः सप्तचिकीर्षु लोक संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोग को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करे। यहाँ पर दो लोगों के बारे में वर्णन कर रहे हैं भगवान कि अविद्वांसो और विद्वांस, दो शब्द आते हैं ना, अविद्वांसो और विद्वांस, दोनों तद्विरुद्ध है। एक बहुत ही अज्ञानी है, उसके बारे उसको आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो हम लोगों ने पहले देखा ना, पहले के दूसरे अध्याय में, बुद्धि योग मतलब वो ज्ञान के आधार पर, हम आत्मा के ज्ञान के आधार पर कार्य करना होता है, कर्म करना होता है, फल से आसक्त हुए बिना। जो शारीरिक देहात्म बुद्धि में रहते हैं वो लोग फल से आसक्त होते हैं, वो कृपण लोग हैं, ऐसे भगवान वर्णन किए। यहाँ पर उनको अविद्वांस कहा गया है। जैसे अविद्वांस लोग फल से आसक्त होकर कार्य करते हैं, कुर्वन्ति भारत हे भरत वंशज, कुर्यात् विद्वान् सतासक्तः शिकीर्षिर् लोक संग्रहम्। तो लोक संग्रहम् तो दूसरों को सही मार्ग में मार्गदर्शन करने के लिए क्या करना चाहिए, वो ऐसे कार्यों में लगना चाहिए विद्वानों को। लोक संग्रहम का शब्द का अर्थ भी होता है इकट्ठा करना लोगों को, लेकिन क्यों इकट्ठा करना, उनको शोषण करने के लिए इकट्ठा नहीं करना, उनको सही मार्गदर्शन में लेके जाने के लिए इकट्ठा करना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ना बहुत सारे लोग हम लोग प्रचार करके इकट्ठा करेंगे, लेकिन हम उनको सही मार्गदर्शन में लेके जाना चाहिए। तो वो वास्तविक चीज है चिकित्सुर लोक संग्रह। यहाँ पर डिजायरिंग टू लीड इन अ प्रॉपर पाथ, तो वो अर्थ होता है। ठीक है, तो और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं दोनों के कार्य ऐसे बाहरी दृष्टिकोण से लग सकते हैं कि दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं, एक ही समान कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें बहुत अंतर होता है। कैसे अंतर होता है, दिन और रात का अंतर होता है। हम लोगों ने पहले चर्चा किया ना, दिन और रात यानिशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी तस्याम जागृति भूतानी सानिशा पश्यतु मे, ऐसे भगवान बोलते हैं श्याम जागृति भूतानि सानिशापश्य। तो बाहर से एक ही हो सकते हैं लेकिन अलग अलग। कौन पढ़ेंगे तात्पर्य? जल्दी।
एक कृष्ण भावना भावी मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावी व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावना मृत के विकास में सहायक न हो, यहाँ तक कि वो उस अज्ञान पुरुष की तरह कर्म करता रहता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावी व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को ये प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फल को कृष्ण भावना में कार्यों में नियोजित किया जा सकता है।
न बुद्धि वेदं जनयेद् ज्ञानं कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में असक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए जिससे कृष्ण भावना का क्रमिक विकास हो। न बुद्धि वेदम जनयेत् अज्ञानम कर्म संगिना, जो अज्ञानी है और कर्म संगी मतलब जो फल से आसक्त है, तो ऐसे लोगों का हमें क्या नहीं करना चाहिए, उनको विचलित नहीं करना चाहिए, कर्म को रोक कर उनको विचलित नहीं करना चाहिए, ऐसे भगवान कहते हैं। अपितु विद्वान लोग क्या करना चाहिए, भक्ति भाव में कर्म करते हुए दूसरों के भी उस मार्ग में लेकर आने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि दूसरों को सिखाना चाहिए कि कैसे हमें हमारे कर्म फलों को भगवान कृष्ण को अर्पण करना चाहिए करके। एक भक्ति सिद्धांत सासन ठाकुर के एक शिष्य थे, वो हर महीना उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम लोग। वो हर महीना क्या करते थे, बहुत सारा धन है वो मठ को देते थे, जो भी है वो, जो भी वो उनका सैलरी था तो सभी वो देते थे मठ को। तो वो वहाँ पर गए, उनके पास गए, कौन है वो, सुभाष चंद्र बोस के पिताजी कौन है वो, सत्येंद्रनाथ बोस, सत्येंद्रनाथ बोस खटक खटक ना, सत्येंद्रनाथ बोस शायद। तो उनके पास गए वो और उनको पूछा उन्होंने, उनको हर आप गौड़ीय मठ को धनराशि दीजिए हर महीना ऐसे। तो उन्होंने पूछा कितना आप देते हो ऐसे, पूछा मैं उस पहले बताया उन्होंने, आप जितना देते हो उसका मैं डबल दूंगा ऐसे बोल दिया सीधा, गर्वित होकर। लेकिन बाद में उनको पता चल गया कि ये 600 रुपये देते हैं हर रोज, उस समय पर 600 रुपये मतलब लाखों 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 लाखों, उस समय भी उनका बहुत धन था लाखों, अभी 1-1 करोड़ होगा हर महीना करोड़। फिर उन्होंने ऐसे मतलब बोला था एनीवे वो चैरिटी के बारे में बाद में उसको चर्चा करेंगे। तो कैसे हमारे फलों को, कर्म फलों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए उनको, तो धीरे धीरे उनको लेकर आना चाहिए। तो अज्ञानी क्यों है, प्रभुपाद बोलते हैं लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्र तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों के अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं, किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्र तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने के में बाधा न पहुंचाए, अभी तो उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर में कृष्ण भावना भावित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्येक कृष्ण भावनामृत के क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों को पालन करने से प्राप्त होते हैं। प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुक्ता। एक चीज यहाँ पर इन श्लोकों में समझना भी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर बार बार प्रभुपाद बोलते हैं जो कृष्ण भावनामृत में लगते हैं तो उनके लिए ये सब अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है ऐसे। लेकिन आजकल हम लोगों को कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए ये सब वर्णाश्रम को स्थापन करने की इच्छा प्रभुपाद जी ने व्यक्त किया। तो क्यों आंदोलन बढ़ नहीं रहा है, क्यों आंदोलन नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये वर्णाश्रम न होने के कारण सभी लोगों को हम लोगों को नहीं लगा सकते भगवान की सेवा में। या प्रकृते क्रियमाणे गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमुक्तात्मा कर्ता हम। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे जीवात्मा अहंकार के प्रभाव में मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। तो क्यों ये बता रहा है? क्योंकि जब वो अपने आप को कर्ता मानता है तो तुरंत ही कर्म फल से भी वो आसक्त हो जाता है। मैं करता हूँ, मैं ही इसका भोग करना चाहिए इस कर्म फलों को, लेकिन ये नहीं जानता है कि वो सब कुछ भगवान के द्वारा प्रदत्त होता है। वो कर्म के फल भी भगवान, अंत में भगवान ही प्रदान करते हैं, और करने के लिए जो शक्ति है, कोई सुविधा है, वो सब भगवान प्रदान। ये शरीर भी भगवान ने उनके भौतिक प्रकृति के द्वारा बनाई गई है ना ये शरीर, तो सिर्फ जीवात्मा इच्छा कर सकता है, उसके ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अपने आप को कर्ता बाढ़, और वास्तव में तीन गुण ही यहाँ पर सभी कार्य का संपन्न करते हैं। जब हम लोग अपने आप को कर्ता मानते हैं तो फिर कर्मों के जो फल है उसको हमें भुगतना पड़ता है। तो पिछले श्लोक में, दो श्लोकों में विद्वान और अविद्वान, और पिछले श्लोक में ऐसे अज्ञानम कर्मसंगीनाम, ऐसे वो अज्ञानम कर्मसंगियों के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रहा है। तो 25वां श्लोक में विद्वान और अविद्वानों के दोनों के बारे में बताया, और पिछले श्लोक में वो अविद्वान जो है उनके बारे में बताया, और इस श्लोक में भी भगवान उसको आगे बढ़ा रहे। तो वो अविज्ञान अहंकार से मत हो जाता है अपने आप को, और कर्ता मानता है वास्तव में वो क्या है। तो और श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में ये दोनों व्यक्तियों का, विद्वान और दोनों व्यक्तियों के बीच में अंतर कैसे होता है, चेतना का अंतर होता है। बाह्य कार्यकलाप एक ही हो सकते हैं, तो मूलतः क्या होता है, अहंकार, वो उनके दोनों के बीच में अंतर होता है। एक व्यक्ति अपने आप को इस कार्य का कर्ता नहीं मानता है, दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है, वो कार्य का मैं ही करता हूँ, उसके कारण वो आसक्त हो जाता है फल से। तो ये सब बहुत सारा दार्शनिक विषय है, कौन करता है, कौन, हु इज द कॉज ऑफ एक्शन। तो पुराने वैदिक काल में, पुराने जमाने में इतने सारे इसके ऊपर चर्चा होता था, इसकी इतने सारे वाद विवाद हुआ करते थे, अलग अलग जो कर्म मीमांस न्याय ये सब लोग, सभी दर्शन थे ना, वो लोग सैकड़ों हजारों सालों से इसके ऊपर चिंतन मनन कर रहे, कौन करता है। हम लोग इसको, ये श्लोक को आसानी से, हाँ भगवान ने बताने, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार ना करता हूँ। भगवद्गीता में जो वर्णन आया है, इस निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए बहुत बड़ा चीज़ है ये जो सिद्धांत यहाँ पर वर्णन किए गए है। हजारों हजारों सालों तक ये सब क्या है, ऋषि मुनिगण इसके ऊपर चिंतन कर रहे। तो अहंकारवश ये जो अविद्वान व्यक्ति है वो अपने आप को खत्म होता है। पढ़िए इसको, कोई पढ़ेंगे।
जो व्यक्ति इनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर और कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है। वो ये नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अदक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंतत्वता वो कृष्ण के अधीन है। अहंकार बस ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही उसके अज्ञान का लक्षण है।
तो कभी ऐसे भी करते हैं ना हम लोग, मैंने किया, अहंकार विमूढ आत्मा, मैं कर रहा हूँ, ऐसे बोलते, तो ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने बनाया इसको, ऐसे भी सोचते हैं हम लोग ना, तो मैं और मेरा,
उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके तथा स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अलक्षता में की गई है तथा उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावना मृत के राग कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए।
तो जो लोग भक्त होते हैं वो लोग सोचते हैं सब कुछ भगवान के कृपा से हुआ, संपन्न हुआ, ऐसे वो लोग उनका अनुभव होता है, उनका चेतना होता है। ठीक है, भगवान शक्ति हम लोग कह रहे थे ना, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, भगवान एक लकवा हो गया तो क्या हो जाता है, हम लोग इच्छा कर सकते हैं कार्य करने के लिए लेकिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सभी भगवान के हाथ है, भाव है, भगवान का शरीर है ये। तो तब हम लोग ये सब जानेंगे, तब अहंकार से मुक्त हो जाएंगे।
अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वो शरीर की इंद्रियों के स्वामी है। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त होता रहे मोहग्रस्त रहता है जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शास्त्र संबंध को भुला जाता है।
तो जब हम लोग इसका एक और अर्थ होता है, भगवान ने जो दिया है नियम उसको पालन नहीं करेंगे, हम लोग भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे, अहंकार से बोलेंगे मैं अपना जीवन बिताऊंगा, तो क्या हो जाता है, फिर उसका नतीजा जो है वो भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन जब भगवान को हमारे नेतृत्व स्वीकार करेंगे, उनके नेतृत्व हमें हम लोग स्वीकार करेंगे तो क्या हो जाता है, भगवान जो कुछ भी होता है वो भगवान देखभाल करते हैं, आगे जाके हमें बुरा हो अच्छा हो हम लोग भगवान के ऊपर निर्भर है तो वो हमें देखभाल करेंगे। तो अगला श्लोक, तत्ववित्तो महाबाहो गुण कर्मा विगागये हो गुणा गुणेशु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के वेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता। तो तत्ववित्तु महाबाहो, तो वो क्या है, तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो। तो जो कर्मों के अलग अलग विभाग होते हैं, अलग 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 प्रकार के कर्म होते हैं, हम लोगों ने पहले चर्चा किया ना, कर्म विकर्म कर्म वगैरह, उनका ज्ञान होता है उनको और परम सत्य को भी जानता है तत्ववित्तु। तत्ववित्तु शब्द का भागवत में वर्णन आता है ना, कौन से श्लोक में तत्व का कैसे कहाँ कैसे वर्णन आया है भागवत में, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो जो वदन्ति तत्व तत्व विदस् तत्व विद या तत्ववित्तु या तत्वविद दोनों एक ही है, जो तत्व को जानते हैं उन्होंने कहा है कि परम सत्य क्या है, वो अद्वै ज्ञान है, उसको अलग अलग जो परम सत्य के विद्यार्थी है वो उनके साक्षात्कार के अनुसार ब्रह्म परमात्मा और भगवान करके संबोधित करते हैं। तो इस व्यक्ति को भी अलग अलग प्रकार के जो कर्म क्या होते हैं उसका ज्ञान होता है और भगवान के बारे में उनको ज्ञान होता है, तो इसलिए गुणा गुणेशु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। वो कभी भी अपने आप को इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता है। इंद्रिया और गुणा मीन्स इंद्रिया, गुणेशु तो वो इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे वर्णन, गुण मतलब क्या, हम लोगों ने चर्चा किया तीन गुण होते हैं, लेकिन इंद्रिया किससे बनते हैं, तीन गुणों से बनते हैं, इसलिए उनको इंद्रियों को गुण भी कहते हैं। इंद्रियाण इंद्रियार्थे बेस ऐसे भी कह सकते थे श्लोक में, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय के बीच में जो संसर्ग होता है वैसे भी कैसे, गुणा गुणेश मतलब जिनकी गुण से बनता है, तो इंद्रियों का भी गुण बोलते हैं संस्कृत भाषा में। तो इसके बारे में पंचम अध्याय में और भगवान वर्णन करेंगे। और वो कौन सा श्लोक है जहाँ पर बुद्धिमान लोग ऐसे इंद्र तृप्ति में नहीं लगाते हैं, लगते हैं किसी को बताए है? यही संस्पर्श जाप होगा दुख योन एवते आद्यंतवंत कौंतेय नतेषु रमते बुधः। तो कौन पढ़ेंगे पत्थर करें श्लोक में भगवान विद्वान का धर्म है वर्णन किया। 25वें श्लोक में दो प्रकार के लोगों के बारे में वर्णन हुआ। उसके बाद 26, 27 में अविद्वान जो है अविद्वान अलग अलग शब्द का अलग अलग शब्द उनको उपयोग करते हैं ना भगवान क्या कहते हैं अज्ञानम कर्म संगीनाम ऐसे भी उनको वर्णन करते हैं और अहंकार विमुढात्मा कहते हैं उसको। तो ये सब अविद्वान लोग हैं अहंकार विमुढात्मा तो पूरा दुनिया में अभी भर गया है सब है ना अहंकार विमुढात्मा और अज्ञानी नाम कर्मसंगी नाम अविद्वान लोग। और ये 28वां श्लोक में भगवान विद्वान का वर्णन करते हैं। विद्वान कौन होते हैं वो तत्ववित्त होते हैं और कर्म के अलग अलग प्रकार जो है उसके बारे में उनको ज्ञान होता है और आगे उनके बारे में वो क्या करना चाहिए उसके बारे में भगवान वर्णन करते हैं। प्रकृतेर गुण सम्मोढ़ा सज्जन्ते गुण कर्म शूतान कृष्णा विदो मंदान कृष्णवान कृष्ण विच विचालयेत। विन्ना विचालयत प्रकृतेर गुण सम्मोढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव का कारण ज्ञानाभाव का कारण अधम होते हैं किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। तान कृष्णा विदो मंदान मंदान ऐसे यहाँ पर भगवान और एक शब्द उपयोग कर रहे मंदान। सो अविद्वांस अज्ञानी कर्मसंगी अहंकार विमुढात्मा और मंद यहाँ पर तो प्रभुपाद बोलते मंद मतलब कौन है अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति के देन है और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा गया है। तो कोई प्रसिद्ध श्लोक में ये शब्द आ जाता है प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलो अस्मिन् युगे जनाः मंदास मंद मतयो मंद भाग्यायु पद्धतः। व्हाट इज द मीनिंग हिंदी में अनुवाद कीजिए उसको।
कलयुग में लोगों की आयु कम है प्रायेण अल्पायुषा कलो अस्मिन् युगे जनाः मंदास और उसकी बुद्धि मंद है सुमंद मतयो मार्गदर्शन मिलता है उनकी मार्गदर्शन मिलता है उनको मन भाग्य उसका भाग्य भी मन है रूपत्व शरीर में इसलिए है।
ठीक है। और ऐसे अज्ञानी व्यक्ति का और भी प्रॉपर वर्णन करते हैं, उस श्लोक से वर्णन करते हैं। यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातुके स्वदीय कलत्रादिषु बहुमयुज्यति यतीर्थ बुद्धे सलिलेन कथयचेत् जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोकरः। वहाँ पर भी अज्ञानी का वर्णन हुआ है ना, तो वो क्या करता है अज्ञानी, उसके क्या क्या लक्षण है, भगवान कृष्ण ही बोलते हैं, वो भागवत में बोलते पार्वतीता में। तो वो ये शरीर जो कपोवात पित्त से बना है उसको अपना अपना मानता है, या अपने मैं हूँ बोलता है, ये शरीर हूँ जो कपोवात पित्त से बना है। और उनसे उस शरीर से जो संबंधित लोग हैं उनको वो क्या कहता है, मेरे मैं और मेरे, ऐसे अहम ममा भाव में रहता है। तो और वो देश को भी जन्म स्थान को भी वो क्या कहता है, तो पूजनीय मानता है। और वो अलग अलग जो तीर्थ स्थल है वहाँ पर जाके वो क्या करता है, वो सिर्फ पानी में डूबो के अपने पाप को पाप से मुक्त होना चाहता है, ताकि वापस आके फिर से पाप करने के लिए ना? कोई आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त नहीं करता है साधुओं से, तो वो अज्ञानी व्यक्ति मंद व्यक्ति है। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसे अज्ञानी मंद व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनको विचलित ना करना चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य उसके विरुद्ध होते हैं। भगवान के भक्त क्या है, भगवान से भी बहुत दयालु होते हैं, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, विचलित होना करते हैं। और लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं, लेकिन भक्त लोगों को भगवान की हृदय यहाँ पर ऐसे बोल रहे, भगवान उनको विचलित मत करो करके, एक्चुअली भगवान भी चाहते हैं कि उनका विचलित हो जाए। तो भक्त लोग भगवान को जानते हैं, तो वैसे ही भगवद गीता के जो तात्पर्य है हम लोग कैसे जानना चाहिए, भक्तों के द्वारा जानना चाहिए। यू नो भगवद गीता के जो अर्थ है श्लोक है उसको एक भक्तों के द्वारा भक्ति वेदांत तात्पर्य के द्वारा समझना चाहिए, वो वास्तविक उसका अर्थ है। क्योंकि अंत में ये सभी चीज़ों को जो भगवान ने बताया है उसको अंत में भगवान उसको नकार देने वाले, सिर्फ मुझे क्या करो मेरे शरण में आ जाओ ऐसा। पढ़िए।
अज्ञानी मनुष्य दूर भौतिक चेतना से और भौतिक बातों से पूर्ण होते हैं रहते हैं, ये शरीर का देह है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है।
हाँ ठीक है, क्योंकि अभी मंद मैंने पढ़ा था उसको, और उसके बाद में वो श्लोक, अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं और अन्य के साथ शारीरिक संबंध के बंधुत्व मानते हैं, जिसे देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है, वही श्लोक मैंने जो उल्लेख किया ना, तो वो श्लोक को इसी अध्याय के अंत में भी प्रभुपाद जी फिर से उल्लेख करते हैं उसको। यहाँ पर श्लोक को उल्लेख नहीं किया, सिर्फ अनुवाद बताया है, बाद में उसको अभी अगला श्लोक लेंगे, उसको हम लोग तात्पर्य चर्चा करना चाहिए क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशिर्ममो भूत्वा युद्धस्वाभिगतः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान में युक्त होकर लाभ की आकांक्षा रहित स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। भगवान यहाँ पर पांच चीज बता रहे हैं, बताए कौन कौन से पांच चीज, जल्दी जल्दी बताए श्लोक में देख कर।
मैं सर्वाणि कर्माणि,
सारे कर्म मुझे समर्पित करना चाहिए, उसका अर्थ क्या होता है,
संन्यास आध्यात्मिक चेतसा।
और दूसरा संन्यास आध्यात्मिक चेतसा का क्या अर्थ होता है, आध्यात्मिक चेतना में कार्य करना चाहिए। प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं यही कृष्ण चेतना है, यही कृष्ण भावना। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत के बारे में वर्णन हुआ है। वो अध्यात्म चेतसा है और निराश क्या है, लाभ की आशा से नहीं करना चाहिए। और निर्मम का क्या अर्थ होता है, तो मतलब वी शुड नॉट क्लेम प्रोप्रिएटरशिप ओवर रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटी, स्वामित्व की भावना नहीं होना चाहिए फल के ऊपर, ठीक है। और वो कैसे होता है, वो अहंकार विमुदात्मा होता है उसको, नहीं नहीं मेरे कारण ये फल प्राप्त हुआ, उसको स्वामित्व भावना कहते हैं। और आलस्य ऐसे पांच चीज यह बोल रहे, और बोल रहे युद्धस्व विगत ज्वर, युद्ध करो आलस्य को छोड़कर। ऐसे कभी कभी लोग भक्ति जीवन इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहते, उनको अच्छा लगता है भक्ति जीवन, अच्छा लगता है वो फिलोसफी भी समझ लेते हैं, लेकिन आलसी पर नहीं चाहते। इसके कारण वो ये कृष्ण भावना व्रत को स्वीकार करने के लिए उनको हिचकिचाते हैं या वो हो नहीं पाते। तो एक लड़का था जिसको हम प्रचार कर रहे थे, वो इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था, अच्छा था वो अच्छी तरह से, वो उसको बहुत बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसने प्रगति नहीं किया, चार माला ही करते रहा। अभी भी वो सात आठ साल से दो तीन माला करते ही जा रहा है अभी तक, वो क्यों आगे बढ़ा नहीं, क्योंकि आलसीपन से वो बाहर आए आलसीपन। तो प्रभुपाद इसलिए यहाँ पर बोल रहे कृष्ण भावनामृत मतलब कैसे, एक मिलिट्री डिसिप्लिन के समान है ये। अंग्रेज हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, सैन्य अनुशासन की तरह, आप जानते हैं ना मिलिट्री डिसिप्लिन क्या होता है, सुबह उठो उठा देते हैं सुबह सुबह, हाँ जल्दी उठा के और उसको भागने के लिए जल्दी ब्रश होते हैं, वो उनका एक्सरसाइज शुरू हो जाता है। वैसे ही सुबह उठना चाहिए और उठ के मंगल आरती हमारा एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा, मंगल आरती हमारा एक्सरसाइज है ना मिलिट्री डिसिप्लिन। और कृष्ण भावनामृत में एक समस्या क्या हो जाता है, सुबह तो डिसिप्लिन रहते हैं, सुबह का कार्यक्रम में सभी लोग डिसिप्लिन रहते हैं, यहाँ पर पूरा दिन डिसिप्लिन होना चाहिए, वो मिलिट्री डिसिप्लिन में ऐसे नहीं होता है। सुबह आप हो गया खत्म हो गया आपका कार्य, दिन में भी डिसिप्लिन होना चाहिए, नहीं तो आलसीपन से हम कभी मुक्त नहीं हो जाएंगे। तो कैसे आलसीपन से मुक्त हो, तमोगुण से या आलसीपन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, एक रेगुलेटेड शेड्यूल होना चाहिए दिन भर, तभी वो कमांडर जो मिलिट्री कमांडर क्या होना चाहिए, उसको ऐसा एक नियमित शेड्यूल देना चाहिए, तभी आलसीपन से मुक्त हो सकते हैं। या दूसरे शब्दों में जब तक एक आध्यात्मिक गुरु या मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में हम कार्य नहीं करते तब तक आलसीपन से मुक्त नहीं हो जाएंगे, है ना। तो समय होते हुए अभी राउंड्स बचा जाएगा, कोई क्या है सेवा भी नहीं होगा और उसको टालते रहना आगे के आगे के, है ना, माला टालते रहना, सेवा टालते रहना, और क्या क्या होता है उसमें मैं भी नंबर वन ही। तो ऐसे आलसीपन से कभी मुक्त नहीं हो जाएंगे, हमें बहुत डिसिप्लिन, इसको ही वैदिक साधन भक्ति कहते हैं, रेगुलेटेड डिवोशनल प्रैक्टिस, नियमित हमें साधन भक्ति करना चाहिए, कभी हम लोग इस आलसीपन से मुक्त हो सकते। तो ये प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो श्लोक है ये भगवद गीता का प्रयोजन उद्देश्य को प्रयोजन। सो what proper has prayojan matlab what is this, this verse clearly indicates the purpose of bhagavad gita. hum logon ne charcha kiya tha na bhagavad gita ka kya purpose hai, uddeshya hai, prayojan is same, it is
प्रयोजन मीन्स फल रिजल्ट ऑफ देशन
प्रयोजन को समझाता है। क्यों क्यों प्रभुपाद जी ऐसे कह रहे हैं, ये श्लोक भगवद गीता का प्रयोजन बताइए। यहाँ पर वो श्लोक शब्द आता है ना, संन्यास आध्यात्म चेतसा कृष्ण भावनामृत, वो आध्यात्मिक चेतसा क्या है, वो कृष्ण भावना कृष्ण चेतना है, क्योंकि भगवद गीता का उद्देश्य क्या है, कृष्ण चेतना है, और उसको हमें देहात्म बुद्धि से मुक्त करना भगवद गीता का उद्देश्य है, तो वो हमें करता है, इसलिए प्रभुपाद इसको भगवद गीता का हमें ये पांच चीज याद रखना चाहिए। तो पढ़िए इसको और निराशिर एक एक करके थोड़ा हम उसको भी चर्चा करेंगे। तो मई सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों को मुझे समर्पित भाव से करना चाहिए, समय पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर संन्यास आध्यात्म चेतसा लाभ की आकांक्षा रहित निराशिर निर्ममो अपने आप को फल का सृष्टा नहीं मानना चाहिए। तो युद्धस्व विगत कर, पढ़ लीजिए उसको।
इंगित करने वाला है, शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सुदृश्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थिति हो सकती है, क्योंकि कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की निंदित स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अगर श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया, मानो भगवान उसके सेनानायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामी को।
तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, युद्ध स्व युगत ज्वर, युद्ध करो, ऐसे बोल रहे हैं, सेनानायक है। भगवान क्या है, सेना नायक है, उनको आदेश दे रहे हैं अभी युद्ध करो।
और साथ ही स्वामी को बताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्मा में आत्मा है, अतः जब पूर्णतया परमेश्वर का आश्रित रहता है, दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना पालित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है।
तो जब हम लोग ऐसे ही गुरु के मार्गदर्शन में सभी कृष्ण भावना व्रत के कार्य करते हैं, तो हमारा चेतना भी कृष्ण भावना व्रत, नहीं तो तमस आलस सभी आवृत होके डूबे रहते हैं। जब तक हम लोग दूसरों के मार्गदर्शन में कार्य नहीं करते हैं, तब तक वो आलसपन से मुक्त होना मुश्किल है। ठीक है, तो गुरु कुछ करते रहते हैं। एक उदाहरण देता हूँ मैं, वो कौन है, वो तेजस प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य थे, शिष्य है अभी भी है वो। तो उनको प्रभुपाद जी, वो दिल्ली में वो सेवा किया करते थे, प्रभुपाद जी उनको दिल्ली में छोड़ दिया, प्रचार करो यहाँ पर, हाँ एक सेंटर आरंभ करो ऐसे, वो उनको इतना सेवा दिया प्रभुपाद जी ने, हाँ वो रोने लगे, उनको खाने के लिए नहीं कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ दिन, कितना घंटे घंटे वो सेवा करते, बाहर जाके लाइफ मेंबर बनाना, बहुत सारा चीज करते थे। तो उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं था, ऐसा सेवा किया। एक बार एक दिन रोते रोते उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद जी को खत लिखा, मुझे बहुत ये सभी बहुत सेवा हो रहा है ऐसे। प्रभुपाद जी ने वो क्या बताया, उनको सांत्वना दिया, कृष्ण भावना मतलब प्रसन्न रहना, तो आप दुखी मत हो जाइए, चिंता मत हो। और अगला पत्र में और सारे लंबा लिस्ट सेवा का लिस्ट, ऐसे गुरु क्या करते हैं, हमें फमस आलस से हमें ऊपर उठाते हैं।
निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, फल की आशा न करना।
कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता।
तो कैशियर का उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है ना। कैशियर क्या करता है, वो काउंटिंग करके फिर डिपॉजिट कर देता है, उसका कार्य कुछ नहीं, उसका वो काउंट करके वो अपने जेब में नहीं लेते।
इसी प्रकार मनुष्य को समझना चाहिए कि संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। वही अर्थात मुझमें का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से विष्णु महामंत्र में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामी का दावा नहीं करता। ये महामंत्र निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे
कैसा है ना, ये भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं कहलाता है, मेरा कुछ नहीं है ऐसे कहना चाहिए, है ना।
यदि ऐसे कठोर आदेश को दो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित या पूरा करने में कुछ हिचक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार
नथिंग इज माइन लोग बोलते भी है ऐसे लेकिन फिर भी उसे आ सकता है।
मनुष्य ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपनी गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना पालन होकर
इफ देयर इज एनी। तो प्रभुपाद यहाँ पर कठोर आदेश को, यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है पूरा करने में कुछ भी झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। जैसे भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को भी ऐसे आदेश दिया ना, हाँ ये झूठ बोल दो कि अश्वत्थामा मर गया कर, लेकिन वो हिचकिचाए। तो यहाँ पर ऐसे जोर से बोल रहे युद्धस्व विगता ज्वरा, आलसपन को त्याग करके युद्ध करो, ऐसे जोर से भगवान बोल रहे हैं।
अनुतिष्ठन्ति
मानवः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते चेति कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेश को के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरे आदेशों को जो भगवद गीता का पालन करते हैं, भगवद गीता के अनुसार अपने कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर अपने इस उपदेश को श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं तो वो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवः। तो श्रील प्रभुपाद पहले वाक्य में बोलते हैं श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना इस शाश्वत सत्य, ये शाश्वत सत्य है। कौन सा उपदेश है वो जो पिछले श्लोक में बताया, वो उपदेश मई सर्वाणी कर्माणि संन्यास्याध्यात्म चेतसा निराशिर निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। तो वो उपदेश समत वैदिक ज्ञान का सार है। तो नित्यम शब्द भी महत्वपूर्ण है, ये उपदेश क्या है वो शाश्वत है, कभी भी इसको बदलने का जरूरत नहीं है। ऐसे जैसे वेद शाश्वत है वैसे भी भगवद गीता के जो उपदेश है वो भी शाश्वत है, ऐसे प्रॉपर वर्णन कर रहे हैं इसका। आप जानते हैं ना वेद शाश्वत है, तो प्रॉपर उसको वर्णन करते हैं। हम लोगों ने इस अध्याय के 15वें श्लोक में देखा ब्रह्माक्षर समुद्भव, ब्रह्म क्या है, परम ब्रह्म से निकले है ऐसे कहते हैं, उनके श्वास है। प्रभुपाद जी भागवत में भी एक श्लोक आता है वो कैसे वेद भगवान के एक रूप है,
वेद प्रणयितो धर्मो अधर्मस्तद् विपर्य वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभू इति सुश्रुमा। ये धर्मराज के अन्य जो सेवक थे यमदूत, उन्होंने बताया वेदो नारायण साक्षात्। वेद क्या है? भगवान नारायण स्वयं है। तो उस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं जैसे वेद शास्त्र वो दोनों को कंबाइन करते हो, अस्य मातस्य भूतस्य विश्वासितम ऋग्वेदो यजुर्वेद ऋग्वेदो यजुर्वेद साम वेद अथर्वांगेद सह। तो क्योंकि भगवान उपनिषदों में बताया गया भगवान के श्वास है, और जैसे भगवान के श्वास भगवान शाश्वत है और उनके श्वास भी शाश्वत है, इसलिए उनके जो वेद शास्त्र भी है वो भी शाश्वत है क्योंकि उनके श्वास है वो। तो इसलिए यहाँ पर भगवान भी क्या बोल रहे हैं, ये जो मेरे आदेश है वो नित्यम है। तो भगवद्गीता के आदेश भी नित्य है, कभी बदलते नहीं। तो जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक है जो भगवद्गीता पर टीका रखते हैं किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम लोग बहुत सारे चीज़ पालन नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान बकवास बोल दिया है, उससे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, उनको नकारना नहीं चाहिए, उत्साह से हमें उसको पालन करते रहना चाहिए, तो बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है, तो अगला श्लोक ये तद्यासुयम तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमुदास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। पहले हमने
क्या कहा था, आई थिंक वी शुड चेंज दिस वन टू वन शुड प्रेस्क्राइब फॉलो द प्रेस्क्राइब ड्यूटीज।
ठीक है,
ये भी ठीक है।
ओके। सो किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों के उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो ये श्लोक है ना, बहुत जोर से भगवान बोल रहे, समझ में आ रहा है वो भाव हम लोगों ने उस तात्पर्य में प्रकट होता है ना। 30वें श्लोक के तात्पर्य में कमांडर एक सेना नायक के रूप में भगवान उसको बोल रहे, बहुत ये जोर से बोल रहे। इसका अर्थ है इनको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, विशेष करके वो 30वें अध्याय में इसलिए 30वें श्लोक में जो उन्होंने उपदेश दिया उसको बहुत गंभीरता से, वो भगवद्गीता का उद्देश्य है, वो लेना चाहिए। और उसको जो श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं उनको क्या होता है उसको पिछले श्लोक में उन्होंने बताया, और उस आदेश को श्रद्धापूर्वक नहीं पालन करते उनको क्या होगा इस श्लोक में बता रहे। किंतु जो ईर्ष्या व शीन उपदेशों को उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। सर्व ज्ञान विमूलाम स्थान विद्धि नष्टान चेतसः। तो ऐसे नष्टान चेतसः चेतना नहीं है, अचेत सा मतलब उसके अंदर चेतना नहीं है, वो मृत के समान है, तो वो होता है नष्ट भ्रष्ट। यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम आदिवास अधिशाही अधिशाही की आज्ञा का उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश को प्रति अवज्ञा के लिए दंड है। आज्ञा अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वो शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सर्वथा सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। तो कोई भी भगवान के नियमों को उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है, बहुत सारे समाज में प्रभावित लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे नियमों को उल्लंघन करते हैं, बहुत सारे पाप करते रहते हैं, अंधाधुंध पाप करते रहते हैं, तो फिर भी उनके साथ अच्छा होता रहता है, ऐसे हम लोग देखते हैं उसको। लेकिन सिर्फ भगवान क्या कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं। हाँ, सातवें स्कंद में वर्णन आता है ना, जब हिरण्यकशिपु के साथ खेल रहे थे भगवान, तो जैसे एक बिल्ली चूहे को अनुमति खेलता रहता है, चूहे को थोड़ा उसको स्वतंत्रता देता है और चूहा भागने के लिए कोशिश करता है, तुरंत फिर से पकड़ लेता है उसको। तो सिर्फ भगवान इन लोगों के साथ खेल रहे, बस कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, तो सिर्फ समय की बात है, उनका सभी नष्ट होने वाला है। वो लोग भगवान को मानते नहीं हैं, कुछ भी करते हैं, है ना, तो सिर्फ उनको अच्छी तरह से पिटाई कर देंगे भगवान। सो अगला श्लोक, सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानमापि प्रकृति यान्ति भूतानि विग्रह किं करिष्यति। तो ज्ञानी पुरुष भी अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। बला दमन से क्या हो सकता है, तो प्रकृति को लांघ पाना बहुत मुश्किल है। तो प्रकृति को लांघ पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। भगवान यहाँ पर प्रभुपाद वो श्लोक को लेकर आए, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरते माया या पह मामे वे प्रबद्यंते माया मीताम धरंते थे। तो ये जो सातवें अध्याय के है चौदहवें श्लोक, ये दैवी माया जो है, मेरा माया है गुणमयी है, गुणों से युक्त है। यहाँ पर भी है ना, गुण के बारे में, गुण से जो हमारा स्वभाव प्राप्त होता है उसके बारे में वर्णन हुआ है, वो गुण से बांध देती है। दुरत्य कहते हैं भगवान, दुरत्य मतलब उसको पार करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ज्ञानी पुरुष भी क्या करते हैं, अपने गुण के अनुसार कार्य करते हैं। तो वास्तव में हम लोग सभी भक्तों को भी क्या करना चाहिए, उनके गुण के अनुसार ही कार्य में लगाना चाहिए। तो वास्तव में ऑफकोर्स ब्रह्मचारी जो आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, तो उनको हमने चर्चा किया ना पहले, गुणों के प्रभाव से ऊपर उठने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो सामान्य भक्त जो होते हैं उनको उनके अनुसार ही कार्य में लगना चाहिए, और उससे क्या हो जाता है, सेवा भी ज़्यादा हो जाता है। हम लोग ऐसा सोचेंगे कि ये उनको गुण के अनुसार लगाएंगे तो कैसे सेवा सभी संपन्न होंगे, सभी लोग तो एक ही गुण के वाले नहीं होते हैं। और जब वो अपने गुण के अनुसार कार्य करते हैं तो क्या हो जाता है, वो फल भी ज़्यादा हो जाता है उसका, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाता है। तो अभी आप देखिए आजकल जो कॉरपोरेशंस है उसमें क्या होता है, उनको इच्छा नहीं काम करने का, उनको बाध्य करके दबा ज़्यादा पुश करके ऐसे कार्य किया जाते हैं। क्यों, वो गुण के अनुसार नहीं है वो कार्य, है ना। और बहुत सारे ऐसे लोग लोभनाएं दे के इधर उधर कुछ ना कुछ करके वो लोग कार्य करवाते हैं। तो इसलिए उसको दमन नहीं कर सकते उसको, ठीक है। पढ़िए उसको
प्रभाव से नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने सातवें अध्याय में कहा है। अतः सांसारिक यातन पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा कड़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्ण प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावना व्रत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है। भले ही कोई अपने नियत कर्मों में के करने में संलग्न क्यों ना रहे, अतः पूर्णतया कृष्ण भावना पावे हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ परिशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है।
इसके वो जो पहले पांचवें श्लोक के तात्पर्य में वो त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणां भुजैर् हरेर् भजन् अपक्वोता पतञ्जलो हरि यत्र क्वाभद्र बुद्ध मुष्य किं कोवार्धाता, वो श्लोक को उल्लेख करते हैं। और यहाँ पर तात्पर्य में बोलते हैं कि अच्छा है कि अपने स्थिति में रहकर क्या करे, कृष्ण भावना का अभ्यास करे। दैवी वर्णाश्रम का अर्थ हो क्या होता है, तो अपने गुण के अनुसार भगवान की सेवा करना, उसको ही देवी वर्णाश्रम कहते हैं। इंद्रिया इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तेनाशगामचेत्स्यास्य परिपंथिनो। प्रत्येक इंद्रिया तथा उनके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के लिए नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोध है। तो धैर्यदत्तान् वशमागच्छेत् हास्य परिपंथिनो। तो प्रत्येक इंद्रिया तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के लिए नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोध है। तो इसका अर्थ क्या होता है, अभी आपको नियमित रूप से इंद्र तृप्ति करने के लिए अनुमति दिया गया है, वहां पर भी जो नियम होते हैं उनको पालन करना चाहिए। हाँ, हम लोग ऐसे राग द्वेष को तो नियमित करने के लिए जो नियम होते हैं उसको पालन करना चाहिए। इसके बजाय हमें राग द्वेष के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। तो उदाहरण तौर पर आप गृहस्थ है तो आपको नियमित रूप से स्त्री संग करने के लिए अनुमति है, पत्नी के साथ संग करने के लिए, लेकिन उसके लिए नियम है तभी इसी दिन करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, इतना एक ऐसे ही महीने में एक बार या कुछ ऐसे होता है तो उतना ही करना है। उसे उसको नियम को उल्लंघन करके, नियम को पालन न करके हमें तो और काम वासनाओं से या विषयों से हमें या वशीभूत नहीं होना चाहिए, ऐसे कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं ये जो भगवान ने बता रहे हैं, ये जो मार्ग है ये ऐसा राजमार्ग है, उसमें भी जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि राजमार्ग में भी क्या होता है, तो एक्सीडेंट होते हैं। दुर्घटनाएं हो सकते हैं, तो इसलिए उस बहुत ही जागरूक रहना चाहिए। ऐसे भगवान हमें जागरूकता यहाँ पर बता रहे हैं। तो आजकल बहुत बड़े बड़े सुपरफास्ट हाईवे बनाते हैं लोग, लेकिन वहाँ पर भी क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, दुर्घटनाएं होगा। तो हम लोगों ने सुना है 30वें श्लोक में, 31वें श्लोक में, 32वें श्लोक में कैसे ये जो मार्ग होता है भगवान ने, इसको सबको पालन में करना ही चाहिए, राजमार्ग है। कर्म योग के जो मार्ग है, तो कृष्ण बाणामृत में कर्म करना या दैव वर्णाश्रम का जो मार्ग है, तो इसमें भी बहुत जागरूक रहना चाहिए। ऐसे भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, पढ़िए उसको, बहुत लंबा आता है।
जो कृष्ण भावना भावी हैं, ये स्वभाव से होते उन्हें मुक्ति में रस भरने में खिझकते हैं, कितने लोगों की ऐसी भावना ना हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अन्य यंत्रिक भोग भी भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वे इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। धारणा योग सुख बच्ची के लिए आवश्यक है, और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है, अन्य सभी स्त्री को अपनी माता मानना चाहिए। इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है, इन प्रवृत्तियों को दंडित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी।
इसका अर्थ है उस समय पर चल रहा था।
जब तक ये भौतिक शरीर रहता है,
बाबा जी एक बार बोले क्यों मैं यशस्वी हूँ, ऐसे उनको पूछा अपने उनके शिष्यों को, तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि आई एम स्पीकिंग अगेंस्ट ही सक्सेस। ऐसे व्यभिचार के विरुद्ध मैं बोल रहा हूँ, ऐसे कोई ऐसे साधु नहीं बोलते व्यभिचार के विरुद्ध। वो अमेरिका में भी जब गए थे, वो प्रभुपाद जी को उनको बताया गया ना सजेशन, प्रभुपाद जी ये मत कीजिए यहाँ पर, आपको कोई नहीं समझ स्वीकार करेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी बदले नहीं है वो। तो मैं इसलिए यशस्वी हूँ ऐसे बोलते हैं, क्योंकि मैं इसके विरुद्ध बोल रहा हूँ, जो सच्चा साधु है इसके विरुद्ध बोल। अंत में प्रभुपाद जी फिर भी लोग कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि वो वशभूत हो गए ऐसे बोलते हैं। अभी इस कान में ऐसे वो लोग प्रचार करता है लोग, है ना, क्योंकि वो मुश्किल है, इसलिए गृहस्थ के लिए छूट दी गई है, वो कर सकते हैं, अन्य समय भी कर सकते हैं, जो नियम के बाहर भी कर सकते हैं, अपने पत्नी के साथ है, पत्नी के साथ छोड़ कर रखते हैं, लेकिन वो भी वो भगवद्गीता का फिलॉसफी नहीं है, वो हम लोगों को कृष्ण माना। इसलिए क्या हो गया, लोग प्रभुपाद जी वो लिखते हैं सातवें स्कंद के 14वें अध्याय के 10वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, क्योंकि तकनीकी कारण मन विचलित हो जाता है, तभी लोग तकनीकी की, एक्चुअली सभी लोग तकनीकी की प्रगति में नहीं लगना चाहिए, सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति में लगना चाहिए। सिर्फ एक भाग है समाज में, वो लोग ऐसे बहुत ही सरल सा सरल उत्पादन करना चाहिए, तो चीज़ों को उत्पादन करना चाहिए जो जरूरत है हमारे जीविका के लिए, तो अन्य सभी लोग सिर्फ कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। तो क्योंकि सभी लोग आजकल तकनीकी की प्रगति में लगे हैं, टेक्नोलॉजिकल, और उसके कारण मन विचलित हो जाता है। मन विचलित होने के कारण क्या हो जाता है, लोग ऐसे व्यभिचार, मांस भक्षण करना, नशा करना, ये सब करना आरंभ कर दिया है। ये क्यों इतना बढ़ गया आधुनिक समाज में बताए, इसके कारण, तकनीकी की प्रगति के कारण। तो इसलिए हमारे भक्त भी ये चार नियम पालन करना नहीं कर पा रहे, अभी तीन ही नियम बोलते हैं। तो इसके कारण हमें सरल जीवन की ओर जाना चाहिए, तभी ये सब चार नियम को, तब सतोगुण में समाज, जब सतोगुण में रहता है तो चार नियम पालन कर सकते, तो पालन नहीं करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। ठीक है,
जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को आगे सच रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय वृद्धि का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। इस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। भले ही मार्गों की कितनी सावधानी देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है, अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी शुद्ध होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावना में ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेम भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावना से विरक्त होने की चेष्टा ना करे।
They should not become detached from Krishna consciousness only, huh?
समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावानुरक्त के पद पर आसीन होना है।
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मा स्वनिष्ठिता स्वधर्मेयं। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करने भी अन्य कर्मों के बली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो अर्जुन ने इसके इस अध्याय के आरंभ में भगवान कृष्ण को क्या पूछा था, पता है किसी को? निश्चित रूप से आप बताइए क्या श्रेयस्कर। अभी उसका उत्तर दे रहे, आप अपने धर्म को पालन कीजिए, वही आपके लिए श्रेयस्कर है। वो अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं तो भी ठीक है, वो दूसरों का धर्म को पालन करने से भी श्रेष्ठ है। नहीं तो क्या हो जाता है समाज में, उत्पात हो जाता है। उत्पात हो जाता है, कभी कभी ऐसे होता है ना मंदिरों में या हमारे संस्था में क्या हो जाता है, बहुत सारे समस्याएं हो जाती है। क्यों है पता है? जो अपना धर्म है वो छोड़कर कुछ और करना चाहते हैं, वो कोई प्रीचिंग में उसको ज्यादा इंटरेस्ट है, उसको मैनेजमेंट में डाल दिया तो उत्पाद हो जाएगा, है कि नहीं? वो कर नहीं पाएगा इसको। तो वो ऐसे होता है, भयावह स्वधर्मे निधनम श्रेया परोधर्मो भयावह। यहाँ पर कुछ विशेष जो उदाहरण है, प्रभुपाद जी बोलते हैं विश्वामित्र क्षत्रिय था, वो क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए। और परशुराम ब्राह्मण थे लेकिन क्षत्रिय कार्य करते, परशुराम तो भगवान के अवतार थे, वो तो वो ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन विश्वामित्र को तो बहुत तकलीफ हुआ ना, कितने सार पतन हुआ, कितने बारे में पतन हुआ, कितने सारे समस्याएं हो गए, है ना? तो इतना आसान नहीं है दूसरों का। अंत में फिर भी वो हो गए, बहुत तपस्या करके 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 करके, बहुत तकलीफ लेके करके 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 वो ब्रह्म ऋषि बन गए वो बात में। तो इसलिए अच्छा है कि अपने गुणों को ही करना चाहिए, ऐसे बोलते पढ़िए।
भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रमाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जो मनुष्य प्रकृति के गुणों के अशुभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। धारणा सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेष्ठ है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमश अपने हृदय को स्वस्थ रहना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लाभ होकर कृष्ण कामांगर के अधीन हो जाता है तो वह प्रमाणी रूप के निर्देशों में सब कुछ कर सकता है।
लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण भावनामृत में यह शक्य है, जो विश्वामित्र मुनि को बहुत कठिन हुआ वो गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में शक्य है। बहुत आसान नहीं है लेकिन गुरु की कृपा से हो सकता है। वो 17वें अध्याय में भी बोलते हैं स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल है लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में हम लोग कार्य करेंगे तो वो हो जाएगा।
भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरण विश्वामित्र मूल से क्षत्रिय थे किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। कर्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए, साथ ही उसे
तो ये पूरा हो गया। अपने नियत कर्म करना श्रेष्ठ कर अच्छा है। और अगला अभी क्या है, काम के बारे में। काम के कारण क्या हो जाता है, हम लोग नियत कर्म में स्थित नहीं हो जाते, हम लोग विचलित हो जाते हैं। तो उसको बचने से बचने के लिए भगवान चेतावनी दे रहे हैं। तो पहले अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, वो प्रश्न देखेंगे क्या प्रश्न था। अर्जुन उवाच अतकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेया बलादिगनियोजितः। अर्जुन ने कहा हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप करने के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। अतक्केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः, क्यों मनुष्य न चाहते हुए भी अपने पाप कर्मों में लग जाता है? ऐसा लगता है कि कुछ चीज उसको पुश कर रहा है, बलपूर्वक लगाया जा रहा है, उसको बाध्य करता है। श्रील प्रभुपाद तत्पर में वर्णन करते हैं, वास्तव में जीवात्मा क्या है, शुद्ध है भगवान के जैसे, लेकिन भौतिक अवगुणों के संसर्ग में आने के कारण उसका चेतना दूषित हो जाता है, उसके कारण वो पाप कर्म में लग जाता है। और प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं अर्जुन का जो प्रश्न है तो अत्यंत प्रत्याशापूर्ण, क्या है वो प्रत्याशापूर्ण, मतलब उसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, क्या इंग्लिश इज सो वेरी इंटेलिजेंट लाइक दैट वी कैन टेक इट। सैंग्विन मीन्स तो बहुत ही बुद्धिमान का प्रश्न है ये, क्योंकि ऐसे अनुभव होता है लोगों को, बद्ध जीवों को, वो बाध्य होके कार्य करते रहते, पाप करते रहते। श्री भगवान उवाच कामयेश क्रोधयेश रजो गुण समुद्भव आत्मा विद्येन निहवेन। श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध के रूप में धारण करता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। महाशनः, महाशनः में सर्वभक्षी है काम। क्यों ऐसे जीव पाप कर्म में लग जाता है, क्योंकि काम के कारण जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। रजोगुण का लक्षण क्या होता है, बहुत ही काम इच्छाएं, बहुत ही भोग इच्छाएं जागृत होती है रजोगुण के कारण। तो इसलिए जब हम लोग ऐसे भौतिक इच्छाएं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उससे पीड़ित है, तो हमें अपने आप को सतोगुण में स्थित करना चाहिए, तब इच्छाएं कम हो जाते हैं। लेकिन क्या है, सभी जगह ड्राइव ड्राइव ड्राइव, सब जगह मोड ऑफ पैशन, रजोगुण का क्या है, ड्राइव सब जगह रहता है। लेकिन तमोगुण से अच्छा है रजोगुण। सो तो इसलिए क्या हो जाता है, बहुत सारे इच्छाएं, काम इच्छाएं, काम इच्छाएं मतलब भोग करने की इच्छाएं, लस्ट मतलब भोग करने की इच्छाएं। और रजोगुण में ये वो भी एक लक्षण रहता है, ये वो स्त्रियों के प्रति ज्यादा आकर्षण रहता है, रजोगुण का एक लक्षण है, आगे जाके उसके बारे में पढ़ेंगे। और नाम, नेम, फेम, नाम प्रतिष्ठा के आदि के लिए बहुत ही इच्छा रहता है, तो ये सब रजोगुण का लक्षण है। तो उसके कारण काम जागृत हो जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं लस्ट क्या है, ये काम क्या है, तो भगवान के साथ हमारे जो नित्य प्रेम का संबंध है उसमें हमें बहुत प्रेम का संबंध होता है, प्रेम होता है, वो बौद्धिक जगत में क्या हो जाता है, तो बौद्धिक जगत में उसका प्रतिबिंब क्या है, वो काम के रूप में प्रकट हो जाता है। तो इसको और भगवान 15वें अध्याय में वर्णन करेंगे। ये भौतिक जगत एक ऐसा वृक्ष के समान है जिसके शाखाएं नीचे की ओर है और जड़ ऊपर की ओर है, तो ऐसे वृक्ष को तो परिचय, उसका अर्थ क्या है, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का परिचय है। वहां पर भगवान और उनके बीच में, उनके नित्य संगनियों के बीच में जो प्रेम का संबंध होता है या रस होता है, उसको आदि रस कहते हैं। वो आदि रस इस भौतिक जगत में काम के रूप में प्रकट हो जाता है, और उसका अंतर चैतन्य चरितामृत में ये दोनों का अंतर बताया गया है। आत्मेन्द्रिय प्रीतिमांचा तारे बले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो ये क्या है, आत्मा को, हमारे शरीर को या इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा को काम कहते हैं, और भगवान को, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा को प्रेम कहते हैं। तो ये प्रेम और काम, भौतिक जगत में प्रेम नहीं है, वो सिर्फ काम है बस, लोग कहते हैं उसको प्रेम करके बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ये क्या है, काम है। उससे हमारा हृदय जो है वो संतुष्ट नहीं होगा, हृदय भगवान के प्रेम के लिए वो आतुर है, वो उसकी आकांक्षा कर रहा है, उसके उसके लिए तड़प रहा है। लेकिन भौतिक जगत में ऐसे उसको बड़ा चढ़ा कर बोल कर, सभी लोग ऐसे सिनेमा के गाने में ऐसे बड़ा चढ़ा के बोल कर लोग ये लोगों को काम में लिप्त होने के लिए प्रेरित करते हैं, वो लोग धन कमाते हैं उसके कारण, और ये लोग पीड़ित होते हैं उस काम से। तो आई लव यू करके ये सब क्या, कुछ लव नहीं है, सिर्फ काम इच्छा है। जिस हद तक एक दूसरे का काम इच्छा को पूर्ति करने में सक्षम रहते हैं तब तक वो साथ में रहते हैं, उसके बाद अलग हो जाते हैं, बस हो गया। तो विकृत प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, विकृत प्रतिबिंब मतलब वो प्रतिबिंब के लिए कुछ माध्यम होना चाहिए, वो पानी है वो माध्यम है, वो पानी क्या होता है, वो माध्यम तीन गुण है, तीन गुण में वो उसका प्रतिबिंब मिलता है। विशेष करके जो काम इच्छाएं हैं वो रजोगुण का, रजोगुण से उत्पन्न हो जाते हैं। तो प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे दूध है ऐसे कुछ इमली या कुछ नो लेमन सिट्रस वस्तु से संपर्क में आने के बाद क्या हो जाता है, वो तो वो दही हो जाता है। तो दूध दही में परिवर्तित हो गया। वैसे ही ये जो भगवान के साथ जो प्रेम है वो काम में परिवर्तित हो जाता है। जब काम का संतुष्टि नहीं होता है तो वो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, वो तमोगुण है। तो क्यों तमोगुण, वो क्रोध को तमोगुण बताया गया है, क्योंकि तमोगुण का लक्षण होता है कोई भेद करने की शक्ति चला जाता है। जो अच्छा है वो बुरा मानते, बुरा है अच्छा मानते हैं, जो सही है वो गलत मानते, गलत है सही मानते, धर्म को अधर्म मानना, अधर्म को धर्म मानना, सत्य को असत्य मानना, असत्य को सत्य मानना, ये तमोगुण का लक्षण है। तो क्रोध से क्या होता है, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति वंशात् बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश हो जाता है क्रोध के कारण, इसलिए उसको तमोगुण कहा गया। और यहाँ पर तो कैसे उससे मुक्त हो जाना चाहिए, काम से कैसे मुक्त हो सकते हैं, हमें भगवान की सेवा करने की इच्छा को जागृत करना चाहिए, हमारे भौतिक इच्छाओं को शुद्ध करना चाहिए, और क्रोध को प्रभुपाद यहाँ पर भगवान की सेवा में उपयोग करके मुक्त हो सकते हैं ऐसे बोलते हैं। वो उदाहरण देते हैं अर्जुन और हनुमान जी ने तो क्रोध को भगवान की सेवा में उपयोग किया, विशेष करके यहाँ पर हनुमान के बारे में बोल रहे हैं। वो रावण का जो स्वर्णपुरी है उसको जलाकर, क्रोध से क्रोध को उपयोग करते हुए उसको जलाकर वो भगवान के प्रसिद्ध भक्त बन गए, ऐसे बोलते हैं। ऐसे असुरों के ऊपर क्रोध करना चाहिए, जो भगवान को निंदा करते हैं, भक्तों को निंदा करते हैं, उनके ऊपर क्रोध दिखाना चाहिए हम लोग, तब ऐसे हम लोग क्रोध का उपयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने राम नाम जप करके प्रसिद्ध भक्त नहीं हुए, लंका को जलाकर प्रसिद्ध भक्त बन गए वो है ना। तो हम लोग चैंटिंग करेंगे राधा कुंड में बैठ के या वृंदावन के कुंज में बैठ के चैंटिंग कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि प्रचार करके ऐसे अपसिद्धांतों को ध्वंस करके हम लोग प्रसिद्ध भक्त बने, है ना। तो वो क्रोध का उपयोग है, उसको ऐसे उपयोग करना चाहिए। ऐसे बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है ना अभी, भगवान नास्तिकवाद का बहुत प्रचार हो रहा है, उसको नष्ट करना चाहिए। अगला श्लोक, अभी ये जो काम जो है चेतना को कैसे आवृत करते हैं तीन स्तर पर, उसके बारे में भगवान वर्णन कर। धूमेना वृहते वह निर्यतो दर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भस्थते तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो आत्मा का चेतना जो है क्या हो जाता है, आत्मा से आत्मा क्या हो जाता है यहाँ पर, किसी प्रकार जीवात्मा इस काम के विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। जीवात्मा आध्यात्मिक है, उसको काम कैसे आवृत करता है, लेकिन इसका अर्थ है जीवात्मा की चेतना को आवृत करते हैं ये, वो भी शुद्ध रहता है। प्रभुपाद वो 15वें अध्याय में वर्णन करेंगे। चेतना क्या है, पानी के समान शुद्ध रहता है, लेकिन पानी जब मिट्टी के संसर्ग में आ जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। वैसे ही ये तीन गुणों के संपर्क में आने के बाद चेतना अलग अलग स्तर पर प्रभावित हो जाता है। इसलिए पहले तात्पर्य में देखे, जीवात्मा के आवरण के तीन कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है, चेतना दूषित होता है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, तथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। तो इसको हम लोग तीन भागों में विभाजित किया जाता है, मृदु, मध्यम और तीव्र। मृदु मतलब वो थोड़ा ही हल्के से उसका आवरण होता है चेतना के ऊपर, और मध्यम मतलब और थोड़ा ज़्यादा होता है, और तीव्र मतलब बहुत ही इंटेंस उसका प्रभाव होता है चेतना के ऊपर। ऐसे तीन भागों में यही सत्व रजा और तमोगुण है। सत्वगुण में चेतना के ऊपर जो कल्मश जो है बहुत ही हल्का रहता है, तो उसके लिए उदाहरण क्या दे रहे भगवान, तीन उदाहरण यहाँ पर, तीन उदाहरण क्या बता रहे हैं। तो अग्नि धुए से आवृत रहता है, वो ज्यादा उसका प्रभाव ज्यादा नहीं रहता, बहुत ही शीघ्र अग्नि पर भड़क उठ जाती है, तो ये सत्वगुण का प्रभाव है चेतना के ऊपर। और रजोगुण का प्रभाव रहता है तो मिट्टी रहता है उसके ऊपर, है ना, मिट्टी के जो दर्पण के ऊपर मिट्टी के समान। और तमोगुण के मतलब जो भ्रूण है गर्भाशय में रहता है, तो वो बहुत तीव्र आवरण है ना, वो बहुत ही तीव्र रहता है। और इन चेतना को ये आवरण के अनुसार भी अलग 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 स्तर भी होते हैं उसका, तो उसको भी वर्णन करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर ने एक जगह पर वर्णन किया है। वो मुकुलित संकुच आच्छादित चेतना, आच्छादित चेतना मतलब ये तीव्र जो आवरण है उसको आच्छादित चेतना कहते हैं, गर्भाशय के समान है। संकुचित चेतना मतलब थोड़ा उससे भी खुल खिल गया है, फूल जैसा, पहले फूल जैसे होता है वो पूरी तरह से बंद रहता है, थोड़ा खुल जाता है, उसको संकुचित चेतना कहते हैं। और मुकुलित चेतना और विकसित चेतना और पूर्ण विकसित चेतना ऐसे कहते हैं। तो इसको ऐसे तीन भागों में कैसे, ये पांच है, पांच तरह के चेतना है, उसको तीन भागों में कैसे विभाजन कर सकते हैं। आच्छादित चेतना और संकुचित चेतना क्या आते हैं, किसमें आते हैं, तीव्र गर्भाशय, ऐसे तीव्र तमोगुण के लक्षण है, क्योंकि सभी पशु और वृक्ष, वृक्ष आच्छादित चेतना है, और पशु क्या आते, पशु और पक्षी संकुचित चेतना में आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो तीव्र काम से प्रभावित रहते हैं या तमोगुण के। यहाँ पर भी वही उदाहरण देते दिया है, पशु नहीं, प्रभुपाद जी ने वो पशु पक्षियों को दूसरे कैटेगरी में डाल दिया। तो और मुकुलित चेतना, और मुकुलित चेतना भी वैसे मध्यम में आता है, और विकसित मतलब वो सत्वगुण में रहता है, साधना भक्ति करता रहता है, ब्रह्म जिज्ञासा करता है। और पूर्ण विकसित चेतना वो शुद्ध चेतना, वो गुणों से परे होता है। और तैतरीय उपनिषद में भी इस चेतना को अलग अलग, जो शल कवरिंग है यहाँ पर भी कवरिंग है ना, काम के कवरिंग मतलब प्रभाव के अनुसार तीन विभाजन किया, वहाँ पर पांच विभाजन करते हैं, कौन कौन से पता है तैतरीय उपनिषद में, शल्स, प्राणमय, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, मनोमय और ज्ञानमय दोनों एक ही है, और उसके बाद में विज्ञानमय और अंत में आनंदमय, तो ऐसे पांच विभाजन किया गया। तो एक होमवर्क, इसको क्या कीजिए, इस तात्पर्य को पढ़िए और एक टेबल बना दीजिए उसको अच्छी तरह से, क्या क्या उदाहरण दिया है भगवान, थीम उसके टाइटल देना चाहिए कि काम के चेतना के ऊपर प्रभाव, तो है ना, तीव्र मध्यम और मृदु, मृदु के लिए क्या क्या भगवान उदाहरण मतलब उदाहरण दिया, और प्रभुपाद जी ने उसके लिए क्या उदाहरण देते, पशु पक्षी वगैरह सभी उदाहरण देते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे कैसे इस चेतना को शुद्ध करना चाहिए, उसके लिए क्या तरीका है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि चेतो दर्पण मार्जनम गव महादावाग्नि निर्वापनम, ये चेतना को शुद्ध करता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्कुरेण नलेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा, ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान को भी ये आवृत करता है, ऐसे भगवान। ये जो काम है, हम लोग पिछले अध्याय में भी देखा ना, यततो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यत, वो विपश्यत मतलब ज्ञानी व्यक्ति, उसके इंद्रिया भी उसको हरण करके हो जाते। क्यों हरण करके जाते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं भगवान, काम के कारण, क्योंकि ज्ञान को वो आवृत करने वाला है, वो नित्य शत्रु है वो, और कभी कभी संतुष्ट नहीं होता है वो। एक मूर्खता, वो उसने प्रचार किया, काम करते जाओ, काम में लिप्त होते जाओ, जितना ज़्यादा हो सके उतने भोग करते जाओ, भोग करते जाओ, भोग करते जाओ, एक दिन आप उससे उब जाओगे, ऐसे बोल वैराग्य हो जाएगा ऐसे। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, कभी संतुष्ट नहीं होगा वो। इसलिए वर्णाश्रम में क्या है, 4 आश्रमों में 3 आश्रम में उसको अनुमति नहीं दिया गया, 1 आश्रम में वो भी नियमित करके, उसमें ज्यादा लिप्त हो जाएंगे तो वो संतुष्ट नहीं होने वाला, बहुत ही जगत में ही बंध जाएंगे। वर्णाश्रम का अर्थ क्या होता है, कैसे इस काम जीवन से मुक्त होना चाहिए, विशेष करके मैथुन जीवन से, मैथुन को नियमित करने के वर्णाश्रम। जब वर्णाश्रम नहीं रहता है तो केंद्र क्या हो जाएगा, यही मैथुन हो जाएगा। आधुनिक समाज में केंद्र क्या है, मैथुन, फोकल पॉइंट इज सेक्स लाइफ। और इस तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं ना, इस व्हाट इज दैट मैथुन आगर, ये भौतिक जगत क्या है, इस शैकल्स ऑफ सेक्स लाइफ, शैकल्स जानते हैं ना, जंजीर। लोग, हम बता रहे थे ना, एक ऐसा जंजीर है, लोग सोचते हैं कि मुक्त है करके, लेकिन सब लोग इससे बंध रहे हैं, इस जंजीर से। तो उसको काट के जाना चाहिए, पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावम धयोरथो हृदय ग्रंथि माहो, अतः ग्रह क्षेत्र सुताप्त विद्यर जनस्य मोहो यम अहम ममेति। सब लोग क्या है, मैथुन, हम बता रहे थे ना उस दिन, हम लोग कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं, वो लोग मैथुन भावना भावित है। मिथुनी भावम, वही शब्द यूज किया। तो उसके कारण सब लोग ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्त जनस्य मोहयम, तो ग्रह बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बांध रहे हैं, बड़ा बड़ा कंपनी में जॉब ले रहा है क्षेत्र। पहले जमाने में थोड़ा खेती करते थे तो जुगते थे, लेकिन अभी कंपनी में जॉब ले रहा है क्षेत्र, सुत बच्चे होंगे आप, तो वो स्त्री का क्या होता है, कुछ सगे संबंधी होते हैं और इसका सगे संबंधी होते हैं, ऐसा वो समाज बढ़ जाता है। वास्तव में स्त्री शब्द का ही अर्थ क्या होता है, जो विस्तार करती है, विस्तार करती है, और उसके बाद में क्या होता है, तो सुता आप्त वित्त सबके लिए सेंट्रल क्या चाहिए, वित्त 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 चाहिए, मनी मनी, पैसा पैसा पैसा, धन 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 धन, तो ऐसे ये चीज चाहिए। तो एक व्यक्ति अकेला है तो ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, है ना, अब यहीं पर सो जाओ, उठ के नहा के, अलग सा कुछ कमरा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, है ना, कहीं एक जगह मिल गया, लेट के उठ के चला गया, है ना। कुछ जरूरत नहीं है तो, लेकिन एक बार स्त्री आ गई जीवन में तो क्या हो गया, ये सब होता है, ये सब चाहिए, सब चाहिए। इसलिए अहम मम जनस्य मोहो यम अहम ममेति, अहम मम बढ़ जाता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब एक व्यक्ति अकेला रहते हैं, जब एक व्यक्ति अकेला रहते हैं तो क्या हो जाता है, उसको इस भौतिक जगत से आसक्ति और आकर्षण नहीं रहता। एक बार स्त्री आ गए तो 100% उसका आकर्षण इस भौतिक जगत से बढ़ जाता है, उसका आसक्ति बढ़ जाता है 100%, 100 times। तो ये आगर है, मौतुन आगर। सभी जो ऋषि मुनियों ने, सभी जो भागवत में तो सभी मुनियों ने, सुखदेव मुनि, नारद मुनि, कपिल मुनि, सब लोगों ने इसको खंडन किया, स्त्री संघ को खंडन किया। ये सबसे बड़ा बंधन और दुख का कारण है। जिस हद तक हम लोग इसको मुक्त होते हैं, इससे मुक्त उस हद तक हमारा मुक्ति है, और जितना इसमें लिप्त हो जाते हैं हमारा भौतिक अस्तित्व बढ़ता ही जाता है। कभी ये संतुष्ट नहीं होता। जैसे अग्नि में ईंधन डालने से बढ़ता ही जाता है, ऐसे ही ये बढ़ता जाता है। तो आगे का श्लोक लेंगे। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर् विमोहितेश ज्ञानमावृत्य देहिनाम। तो अभी भगवान, क्योंकि अभी तक दो श्लोकों में वो नित्य वैरी तीन श्लोकों में वैर, वो 37वें श्लोक में और 48वें श्लोक में, नहीं 39वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया, वो नित्य वैरी करके संबोधित किया। अभी भगवान बता रहे कहाँ पाक पर ये रहता है, तो इसलिए बताते हैं कि उसको हम लोग समझे कहाँ पर वो विद्यमान है, ताकि उसको जैसे स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स वो डिफेंस में ऐसे होता है, वो लोग रक्षा, वो क्या कहते हैं, वो देखते हैं एनिमी शत्रु कहाँ कहाँ पर अपना वो स्थान है उनका, उसके ऊपर वो लोग क्या करते हैं, शूट करते हैं। इसलिए भगवान भी इस यहाँ पर कहाँ पर ये विद्यमान है उसको बताते, ताकि हम उसको उससे मुक्त हो जाए। इंद्रिया मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है, इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तो श्रील प्रभुपाद भागवत से उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पर, ज्ञान क्या है जो मनुष्य ढक लेता है। हम लोगों ने इसको चर्चा किया है, यस्य आत्मबुद्धि पुनपे त्रिधातु के स्वदीय कलत्रादि शुभों में यदि यतीर्थ बुद्धि फलिने न चर्चित जनेश अभिज्ञेशु सैव गोकर। तो मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध से में सुनते हैं तो मन इंद्र तृप्ति के समस्त भावों का मन इंद्र तृप्तियों के समस्त भावों का आधार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिय काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसे काम पूरे रुचियों के राजधानी बन जाती है। तो बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तदात्म्य कर लेता है। कैसे हम देहात्म बुद्धि में आ जाते हैं, इसके बारे में प्रभुपाद बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से यहाँ पर इस तात्पर्य में वर्णन किया है। कैसे अहंकार शब्द का अर्थ है मैं ये शरीर हूँ, मैं देहात्म बुद्धि, वो देहात्म बुद्धि, मैं ये देह हूँ, ऐसे जो बुद्धि होता है उसको वर्णन करते हैं। सो इंद्रियाणाम ही मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते। तो बुद्धि राजधानी है ये, इसलिए ये भी श्लोक उल्लेख कर रहे हैं। यस्यात्म बुद्धि वहां पर शब्द आता है ना, जिसका बुद्धि ये शरीर से परे नहीं जाता है, वही अहंकार है, उसी को देहात्म बुद्धि भी कहते हैं। वो किसके कारण हो जाता है, वो ये काम इच्छा के कारण भौतिक बुद्धि हमें प्रभावित कर देता है, हमें गलत पहचान करने के लिए बाध्य कर देता है। तो आगे भगवान वर्णन करते हैं, तस्मात्त्वं इन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। तो कैसे यह काम से मुक्त हो सकते हैं, इस ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले जो काम है उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसमें बताया गया। इसलिए हे भरतवंशी ओम में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो ज्ञान विज्ञान का क्या अर्थ होता है, भागवत से प्रॉपर यहाँ पर वर्णन करें। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञानम विज्ञान समन्वितम सरहस्य तदंगम च ग्रहणम गदितम मया। तो ये श्लोक कहाँ से है बताया आपको, चतुश्लोकी भागवत के बाद एक दो तीन श्लोक नहीं उसके पहले के श्लोक है ये 33 to 36 इस चतुश्लोकी भागवत है, इसके एक दो श्लोक। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रसमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों के विवेचना की जाती है तो ऐसे ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। तो इसको इस श्लोक को क्यों यहाँ पर उल्लेख कर रहे, क्योंकि काम क्या है, ज्ञान विज्ञान नाश करने वाला है। तो इसका अर्थ है कि हमें ज्ञान विज्ञान कब प्राप्त होता है, जब भगवान उसका हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कृपा करके हमारा जो काम इच्छाएं हैं उसको निकाल देते हैं, उसको निकाल देते हैं। हम लोग स्व इच्छा से हम लोग उससे मुक्त नहीं हो सकते, हम लोगों को क्या करना चाहिए, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगना चाहिए, इसलिए उनका नाम भी ऋषिकेश है। तस्मात्म इंद्रियाण्यादो, आदो मतलब आरंभ में इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। नियम्या भरतर्षभ, तो पापमानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। ऐसे क्या हो जाता है, इंद्रियों को हम लोग भगवान की सेवा में लगाएंगे तो उसमें इंद्रिया मतलब मन भी आ जाता है, मन भी इंद्रिया है, तो उसके वो भगवान की सेवा में लगाएंगे तो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता। कैसे लगाते हैं हम लोग भक्ति में, नासिकाओं को भगवान के फूलों को, नेत्रों को भगवान का दर्शन करने के लिए, कान को उनके बारे में श्रवण करने के लिए, जीवा को उन्होंने उनका प्रसाद को ग्रहण करने के लिए, तो ऐसे हम लोग इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, मन को उनके नामों के उच्चारण करने के, ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। तो ये सब करके हम लोग क्या करते हैं, इसे काम से मुक्त हो जाएंगे। अगला श्लोक, और दो श्लोक हैं, खत्म कर देते हैं, तो आप बाद में तात्पर्य पढ़ लीजिए, और प्रश्न हम नहीं लेंगे अभी, जब अगला श्लोक कल सुबह पहले प्रश्न से आरंभ करें, ठीक है, आप लिख लीजिए प्रश्न। इंद्रियाणि परन्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनस्तस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तस्तु सः। कर्मेन्द्रिया जड़ पदार्थ की उपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इंद्रियाणि परन्याहु, Why they have translated it like this actually? Okay. तो यहाँ पर कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ के भी अब उपेक्षा श्रेष्ठ है, जड़ पदार्थ से भी इंद्रियां श्रेष्ठ है। जड़ पदार्थ मतलब जस्ट यू नो एलिमेंट्स, यू नो अर्थ वाटर फायर एयर ईदर, उससे भी इंद्रियां श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से भी बढ़कर है। ये हायरार्की बता रहे भगवान, तो बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो क्यों ये हायरार्की बता रहे हैं, क्योंकि अभी भौतिक अवस्था में क्या हो गया है, इंद्रियां प्रबल हो गई है, काम के कारण इंद्रियां प्रबल हो गए हैं, और मन भी काम से युक्त है और उस काम का यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी ने वर्णन किया वो बहुत गोडावन बन जाता है भौतिक इच्छाओं का जब इंद्रिय विषयों के बारे में सुनता है तो काम, और मन भी क्या है ऐसे लस्टी इंटेलिजेंट वो भी दूषित हो गया है काम से, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बीच में भेद नहीं कर पा रहा है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, आत्मा इन सभी के प्रभाव में आ जाता है, अहंकार के प्रभाव में आ जाता है, है ना। तो जैसे वो उदाहरण हम बता रहे थे उपनिषदों में छठे अध्याय में भी प्रभुपाद जी उसको उल्लेख करेंगे श्लोक को, उपनिषदों में ऐसे वर्णन आता है कि ये इंद्रियां घोड़े के समान है और शरीर रथ के समान है, और रथ में ये जो पैसेंजर जो है वो आत्मा है, और रथ को चलाने वाला कौन है, बुद्धि वो सारथी है, और जो रस्सी है वो मन है। तो अभी जो वो जो पांच जो घोड़े हैं पंच इंद्रियां वो एक वो अलग अलग जो दिशा में वो खींच के लेके जा रहे हैं, तो और ये जो सारथी है बहुत ही दुर्बल है वो खींच ही नहीं पा रहा है, तो उसका स्थिति क्या होगा, वो पैसेंजर का क्या स्थिति होगा, बहुत ही खतरनाक स्थिति होगा, है कि नहीं। वैसे स्थिति में है हम लोग अभी खतरनाक स्थिति में है, प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत जगह पर डेंजरस कंडीशन बोलते हैं, जीवात्मा क्या है बद्ध जीव क्या है बहुत खतरनाक स्थिति में है ना, सभी इंद्रियां एक दूसरे जगह खींच के लेके जा रहे हैं, बुद्धि तो शुद्ध नहीं है दुर्बल नहीं है, उनको खींच के एक जगह पर नहीं लगा रहे। क्यों हमें शास्त्रों को अध्ययन करना चाहिए, वेद करने की शक्ति बुद्धि हमारा शुद्ध हो जाता है, भगवान इसलिए बताए अंत में भगवद्गीता के अंत में कि भगवद्गीता जो मैं अध्ययन करते हैं वो बुद्धि से मेरा पूजा करते हैं। क्यों, बुद्धि शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो गया तो उसको वेद करने की शक्ति आता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको ज्ञान आ जाता है, तब क्या हो जाता है वो मन को और इंद्रियों को खींच के भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इसलिए ये शास्त्र अध्ययन करने के लिए बताया गया। एक बार प्रभुपाद जी के हमने बताया ना उस दिन कि उनके एक शिष्य जीबीसी थे, टेंपल प्रेसिडेंट थे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का टेंपल प्रेसिडेंट थे, वो एक स्त्री के साथ भाग गए, वो उनके प्रभुपाद जी के उस समय पर सेवा ससुर महाराज कर रहे थे, उनको टेलीग्राम मिल गया ऐसे हो गया करके, लेकिन वो सोच रहे थे कब प्रभुपाद जी को बताऊं करके, क्योंकि उनको पता था प्रभुपाद जी बहुत दुखी हो जाएंगे करके, तो प्रभुपाद जी लेकिन एक दिन उनको कहना तो पड़ेगा ही ना, उनको बता दिया, उसको सुन के वास्तव में प्रभुपाद बहुत दुखी हो गए और गुस्से से बोले ये लोग क्यों मेरे ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं, मेरे ग्रंथों को पढ़ने से ये लोगों को पता चल जाएगा कि माया कैसे कार्य कर रही है, तो अभी दुर्बल हो रहा है बुद्धि, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए इसको। कभी कभी ये विषय जो है अभी हम लोग कर्म योग कर्म का फल इसके बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं, उतना रुचि नहीं मिलता है, लेकिन इसका ज्ञान होना चाहिए सब, कैसे हम लोग ये वास्तव में वो कर्म फल के बारे में क्या बोल रहे हैं, एक दार्शनिक दृष्टिकोण से ये इसका वर्णन कर रहे हैं भगवान, वास्तव में वो क्या खंडन कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति को खंडन कर रहे हैं बस। हमने बताया ना उस जमाने में बहुत ही सोफेस्टिकेटेड इंद्र तृप्ति करते थे कर्मकांड के अनुसार, अभी अंधाधुन, इसलिए हम लोग क्या खंडन करते हैं, ये पशु की तरह कैसे इंद्रिय सुअर कुत्ते की तरह कैसे इंद्र तृप्ति कर, ऐसे हम लोग खंडन करते हैं, लेकिन भगवान दार्शनिक दृष्टिकोण से खंडन करते हैं इंद्र तृप्ति को, पल की आसक्ति को, तो वही अंतर है वही सार है, भगवान यही इंद्र तृप्ति को काट रहे, इंद्र तृप्ति को ये काम क्या है ये इंद्र तृप्ति के लिए बढ़ावा देता है, तो अंत में ये वर्णन कर रहे काम को, तो हमारा बुद्धि को हमें सुदृढ़ बनाना चाहिए, तो इसके और ये 43वां श्लोक में बता रहे एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थव्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जान जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। ऐसे बोलते दुर्जय, उसको जीतना आसान नहीं है, लेकिन अर्जुन को वो प्रेरणा दे रहे महाबाहु करके, तुम बहुत शक्तिशाली हो महाबाहु, हम तो महाबाहु नहीं है, कैसे करेंगे फिर? तो भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, भगवान से तो बढ़कर नहीं है ना ये, काम या माया तो भगवान के, भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली तो नहीं है ना, हमें जानकारी है ना वो, तो ऐसा समझते हैं कि कृष्ण भावनामृत से इसको जीता नहीं जा सकता है, तो हम माया में हैं, इसको समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए। ठीक है, ऐसे भगवान उनको अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके, तो हमें अपने आप को जानना चाहिए। ये जो संबंध ज्ञान है बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है, ये शरीर हमें आध्यात्मिक जीवन में सहायता करना चाहिए, उसको जानकर हमें क्या करना चाहिए, तो हम इस काम को भौतिक इच्छाओं को जीतना चाहिए। तो ऐसे कहते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण।